व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। प्रथेता गणों को भगवान शंकर ने बड़े अच्छे साधन की विधि बताई और उस साधन से वे तपस्या करने लगे थे। विदुर जी ने पूछा कि महाराज, भगवान शंकर का तो यदा कदा और किनी किनी कोई दर्शन होता है, वे आत्माराम है, आशुतोष भगवान प्रचेताओं को कहां कब कैसे मिले ये हमको बताइए। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि प्रचेता गणों को उनके पिता प्राचीन बद्री ने कहा कि बेटा, अब ये देखो मोक्षाध्याय चल रहा है, 8 अध्याय मोक्ष के हैं। कथा तो बहुत पड़ी है, संक्षेप में कहेंगे, सार सार बात पर विचार करते हैं। पिता के आदेश से ये पश्चिम दिशा की तरफ तपस्या करने गए। देखो भागवत में सभी दिशाओं में जाने की बात आती है, वैसे पूर्व दिशा और उत्तर दिशा ये भजन साधन करने के लिए बहुत श्रेष्ठ मानी गई, परंतु फिर भी यहां पश्चिम दिशा में गए, इसका अर्थ यह है कि भगवान सब दिशाओं में रहने वाले हैं, सर्वत्र रहने वाले हैं। भगवान की आराधना कहीं भी की जा सकती है, ऐसी स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए ये बात कही जा रही है। तो वे प्रचेतागण पश्चिम दिशा के लिए रवाना हुए तो वहां उनको एक बहुत विशाल जलाशय दिखाई दिया, समुद्रम उपविस्तीर्णम, इतना विशाल जैसे उसको समुद्र की उपमा दी जा सके। समुद्र तो नहीं था पर समुद्र जैसा विशाल दिखाई दिया, एक जलाशय, एकदम स्वच्छ जल, जैसे महापुरुष का अंतःकरण होता है, महापुरुषों का अंतःकरण होता है वैसा ही। अब क्या हुआ कि उस जलाशय के अंदर उनको नाचने की, गाने की और तबला वगैरह बजने की, इनकी सबकी उनको ध्वनि सुनाई दी, तो मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस पानी के अंदर कौन गा रहे हैं, बजा रहे हैं। तो वे प्रचेतागण कान लगाए लगाए सुनते रहे। इतने में ही उस जलाशय में से भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर को देख करके उन लोगों ने उनके चरणों में प्रणाम किया। आशुतोष भगवान कहने लगे, अरे प्रचेताओ, तुम पर कृपा करने के लिए ही मैंने ये दर्शन दिया है, मैंने ये दर्शन दिया है। जो भगवान वासुदेव की आराधना करता है वो मुझे बहुत प्रिय लगता है, तो मैं तुम्हें एक भगवान की आराधना की विधि बताता हूं। लोग सीधे ही कहते हम भगवान की प्राप्ति करेंगे और हम बस मर्जी आए जैसा ही करेंगे। अरे ऐसे नहीं होता है, हम आपको एक बहुत सुंदर मंत्र बताते हैं। कि महाराज क्या मंत्र है? कि देखो पहले एकांत में बैठ करके जितने भगवान के नाम याद आते हो उन भगवान को आप नमस्कार करो, उन भगवान को प्रणाम करो। कि वासुदेव भगवान को नमस्कार, शंकरषण भगवान को नमस्कार, पंकजनाभ भगवान को नमस्कार। भगवान को नमस्कार पहले करो और भगवान को नमस्कार करने के बाद भगवान का एक दिव्य रूप है वो जो अपने मन में आप रखते हैं, उस दिव्य रूप का ध्यान करो। भगवान का स्वरूप है वो बरसात के समय में जो बदलों का रंग होता है ऐसा रंग होता है। देखो बदलों का, भगवान को घनश्याम क्यों बोलते हैं? घनश्याम इसलिए कहते हैं कि बदल बहुत प्यारा लगता है, बरसात में जब बदल आता है बहुत प्यारा लगता है, और बदल से वर्षा होती है तो भगवान से कृपा की वर्षा होती है। और बदल से कितनी एक देखो शांति मिलती है, गर्मी दूर होती है, ऐसे भगवान के दर्शनों से संताप दूर होते हैं, इसलिए भगवान को घनश्याम कहा। भगवान ऐसे घन के समान श्याम वर्ण वाले, सुंदर नेत्र, सुंदर कान, सुंदर होठ और सुंदर उनकी दंतावली, सुंदर उनके जो है ये भुजाएं, और वो भी शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान, और पूर्व रेचक कुंभक माने पूर्व रेचक संविघ्न वलि वल्गु दलोदरम, भगवान का जो उदर है वो श्वास से ऊंचा नीचा होता, इसको भी ध्यान में लेना चाहिए। देखो भागवत में सब जगह ध्यान की बातें बहुत आती है, पर भगवान के तूंद का ध्यान यहाँ पहली बार ही बताया है, तो नहीं पेट, श्वास लेते हैं ऊंचा नीचा उनका पेट होता है। प्रति संक्रामयद विश्वम नाभ्या आवर्त गभीरया, भगवान के उस नाभि का ध्यान करोगे जो सारे ब्रह्मांड का उत्पत्ति का स्थान है। भगवान के चरणों का ध्यान करो, देखो कहीं चरणों का ध्यान पहले बताया, कहीं सिर का ध्यान पहले बताया है। जो साधक जैसा ध्यान करे उसके लिए सब बात सब दृष्टि से खुली है। एतद रूपम अनुध्येयम, इस प्रकार से भगवान का ध्यान करें, और ध्यान करने के बाद फिर प्रार्थना करें। देखो नाम ध्यान और प्रार्थना ये तीनों चीजें चलनी चाहिए, तब जाकर के भगवान की भक्ति होती है। हम लोग नाम तो लेते हैं पर रूप का ध्यान नहीं करते, रूप का ध्यान करने बैठते हैं तो प्रार्थना नहीं करते। हम हमारे हृदय में भगवान से वास्तव में क्या चाहते हैं, तो ये कहते हैं कि हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, सर्वथा निष्काम होनी चाहिए। कहने लगे कि हे प्रभु आप तो सबके हृदय रूपी गुफा के अंदर विराजमान हो, पर भक्ति के बिना आपका ज्ञान नहीं होता है, और वैदिक उपासना, तांत्रिक उपासना और जितने उपासनाएं सब में तरह तरह की बातें आती है, क्रियाकलाप अलग अलग होते हैं, परंतु आप एक के एक हैं। वैदिक उपासना से भी आप वही मिलते हैं, तांत्रिक उपासनाओं से भी आप वही मिलते हैं। अब देखो भगवान से प्रार्थना करो ना, तो अपने जो अवगुण है वो भगवान के सामने सामने रख दो, एकदम निष्कपट भाव से खोल करके रख दो। क्या एक उदाहरण दे रहे हैं कि प्रमत्त मुच्चई रितिकृत्य चिंतया प्रवृद्ध लोभम विषयेषु लालसम त्वमप्रमत्त सहसा विपद्यसे क्षुल्ले लिहानो हिरिवा कुमंतक है, कि जिस प्रकार से एक मेंढक है उस सांप के मुंह में आया हुआ अपने सामने आते हुए मच्छर को देखकर लपकता है और उसको खाता है, ऐसे ही मैं काल रूपी सांप से ग्रस्त हुआ हुआ संसार के भोगों की तरफ देखकर लपकता हूँ, मुझे उस मेंढक के समान होश ही नहीं है कि इस मच्छर को खाकर तो कितना समय निकालेगा, तो सांप के मुंह में बैठा हुआ है, सांप के मुंह में बैठा हुआ मच्छर है वो। ऐसे ही हम भी काल के मुख में बैठे हुए, पता नहीं कब मर जाए, कुछ पता नहीं मनुष्य का कब कैसे मर जाए, लेकिन विशेष लालसम विषयों में हमारी लालसा बढ़ रही है। इसलिए महाराज इस लालसा को अब आप मिटाइए, आपके अलावा हमारा कोई भी ये दुख दूर करने वाला नहीं है। ऐसे अपने अंदर के जो विकार हैं, अपने जो दोष हैं, जिसको हम देखते हैं वो भगवान के सामने खुल करके प्रकट कर देने चाहिए और निश्चिंत हो जाना चाहिए। देखो भाई मैं भी खूब जोर से सुनाऊंगा और आप भी सावधानी से सुनेंगे, प्रसन्नता सबको हो रही है, बरसात की प्रतीक्षा थी, खूब टेणों की आवाज आ रही है, तो ये आवाज हमारे को सावधान करने के लिए, सावधानी कितनी है आप में और हमारे में। तो मैं भी आपको तेजी से बोलूं तब आप सुनेंगे, आप भी सावधानी से सुनना। तो ये जो मन के विकार हैं, वो जब भगवान के सामने हम रख देते हैं तो रखने के बाद एकदम निश्चिंत हो जाना चाहिए कि अब हमने हमारे दोष भगवान को बता दिए, अब भगवान जाने भगवान का काम जाने, हमारे दोष निश्चित दूर होंगे। ये दोष आज तक दूर क्यों नहीं हुए कि हमने भगवान को दोष दूर करने के लिए कहा ही नहीं, अब जरूर दूर हो जाएंगे। तो कहते हैं इस प्रकार से आप भगवान की आराधना करना। और ये हमको योगादेश ब्रह्मा जी ने सुनाया था और ये मैं तुमको सुना रहा हूँ। हमारे प्रचेतागण बहुत प्रसन्न हो गए और वो प्राचीन दिशा में जाकर अपना भजन करने लगे। ये अब देखो ये सगुण उपासना के दो अध्याय आ गए, अब निर्गुण उपासना की तरफ बात चलती है कि प्राचीन वर्णी राजा थे, वो अपने बेटों को तो भेज दिया, अपने बेटों को भेज दिया भक्ति करने के लिए, और स्वयं वहां पर जो है यज्ञ में लग गया। देखो जिस समय कथा होती हो, कीर्तन होता हो, सत्संग होता हो और बरसात आती हो, उपनिषदों में कहा है, उपनिषदों के वाक्य हैं, संतों ने बताया है कि वो सत्संग बहुत अच्छा होता है, बड़ा अच्छा होता है, बहुत लाभप्रद होता है। बरसात होते हुए जो सत्संग होता है, कथा होती, बहुत लाभ होता है उससे। अपने कथा हो रही है, कभी कीर्तन होता हो तो बहुत लाभप्रद है, पाठ होता हो रामायण का बहुत लाभप्रद है, भगवान की चर्चा होती हो बहुत लाभप्रद है। तो देखो आप लोग सावधानी से सुनना, ये सावधानी से। तो भाई हमारे प्राचीन वर्णी थे, वो अपने यज्ञ करने के काम में लगे हुए थे, यज्ञ करने में लगे हुए। इधर नारद जी महाराज आए, नारद जी ने कहा कि राजन तुम क्या करते हो कि महाराज यज्ञ करता हूं। अरे यज्ञ करते हो लेकिन तुम इतने पशुओं को मारते हो, ये देखो आकाश में पशु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम मरोगे ना, एक एक पशु तुमको खाएगा या मारेगा। क्यों? क्योंकि तुम भी तो पशुओं को मारे हो तो भाई मनुष्य को कर्म का फल मिलेगा। अरे यज्ञ के नाम से तुम हिंसा करते हो, नहीं उचित नहीं है। तो कहा कि महाराज अब क्या करूं। कहने लगे देख थोड़ा ज्ञान से विचार कर सोच। अब वो एक कथा सुनाने लगे, एक रूपक सुनाने लगे। रूपक, रूपक क्या है? छोटे छोटे बच्चों को जैसे कोई कथा सुनाए छोटे बच्चों को, ऐसे प्राचीन वर्णी बच्चा है, बच्चा ज्ञान दृष्टि से बच्चा है। वो बच्चे को जैसे फुसला फुसला करके कहे, ऐसे बताए। कहने लगे देख दो मित्र थे, उसमें एक मित्र का नाम था पुरंजन और दूसरे मित्र का नाम था अविज्ञात सखा। अविज्ञात सखा उसका नाम, अविज्ञात। तो ये दोनों साथ साथ रहते थे मानसरोवर में, और मानसरोवर से दोनों साथ साथ ही रवाना हुए। रवाना होकर के और ये पृथ्वी पर आए, और पृथ्वी पर भी दक्षिण दिशा में गए। दक्षिण दिशा में उनको एक देश मिला, भारतवर्ष, हिमालय के दक्षिण में, और वहां उनको एक नगर दिखाई दिया। वो नगर था नौ दरवाजों वाला, नौ उसके दरवाजे थे, सात दरवाजे तो ऊपर थे और दो दरवाजे नीचे थे, ऐसे नौ दरवाजे थे। नौ दरवाजों में, सात दरवाजों में पांच दरवाजे एक तरफ खुलते थे और एक दरवाजा दक्षिण की तरफ खुलता था, एक जो है उत्तर की तरफ खुलता था और दो दरवाजे नीचे की तरफ खुलते थे, ऐसे नौ दरवाजे थे। उसके अंदर एक स्त्री रहती थी, बड़ी अच्छी स्त्री थी वो, और उस स्त्री के पास में एक पांच फण वाला नाग था। यू नाग हरदम उस स्त्री की रक्षा करे और उस स्त्री की सेवा के अंदर 11 और सेवक थे, सेविकाएं थी, सेविकाएं उस स्त्री की सेवा करने वाले। उधर वो पुरंजन घूमते घूमते आया, उसको वो नगर बड़ा अच्छा लगाई दी, अच्छा दिखाई दिया, और वहां पर दरवाजे पर वो खड़ी हुई औरत बहुत अच्छी लगी, कह रही बहुत सुंदर औरत है ये तो वो अविज्ञात नाम का जो मित्र था उससे सलाह नहीं ली और वो औरत से बात करने लग गया कि भाई तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? तो कहने लगे मैं मेरा बाप का नाम जानती नहीं। तो कहा कि तुम मुझे यहां इस महल में रहने दोगी? क्या तुम मुझे अपना पति बना लोगी? उसने स्वीकार कर लिया कि मैं बना लूंगी। तो वो उस महल में चला गया और वो अविज्ञात नाम का जो मित्र था वो वही देखता ही रह गया। अरे मेरे साथ आया, मेरे से सलाह तो लेता, पर ये तो सुंदर औरत के सुंदर मुखड़े को देखकर उसमें फंस गया। अब जब वो नगर में रहने लगा तो सातों दरवाजों से जो नौ दरवाजों से इधर जाए कभी उधर जाए ऐसे करने लगा। वो वहां पर एक मंत्री था विशुचीन करके, वो उसको हर्ष और शोक का समाचार सुनाता था, और उसके अंधे मित्र भी थे, वे अंधे मित्र उसके साथ रहते थे पुरंजन के। परंतु वो पुरंजन उस नगर में जाने के बाद उस औरत से इतना फंस गया कि वो जैसा करे वैसा वो करने लग जाए। वो भोजन करे तो वो भोजन करे, वो जल पिए तो वो जल पिए, वो दौड़े तो वो भी दौड़े, माने जो वो करेगा वही वो काम करेगा। ऐसे करके वो उसमें फंस गया। एक बार वो स्त्री नाराज हो गई, नाराज हो गई तो वो कोप भवन में जाकर बैठ गई। तो उसने जाकर मनाया कि अरे भाई तुम नाराज क्यों हो गई, बताओ किसको दंड देना है? तुमको नाराज करके हम एक पल भी यहां प्रसन्न नहीं रह सकते। ऐसे करके उसको मनाने में लग गया। और वो औरत ऐसी थी कि किसी बात से नाराज का कोई कारण नहीं, वो खुश होगी कि हाँ मेरे पति मुझे चाहते हैं, मेरे पति मुझे चाहते हैं। ऐसे करते 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 बहुत सा समय बीत गया, लगभग 100 वर्ष बीत गए। खूब तो बेटा हो गए, खूब बेटियां हो गई, खूब पोते हो गए, खूब नाते हो गए, दोईते हो गए, खूब लंबा चौड़ा परिवार हो गया। इधर वो पांच फण वाला सांप था ना, वो 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियों से लड़ाई कर रहा था। लड़ाई करते 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 वो अब थकने लग गया है। और उधर जो है काल की कन्या जरा है, जरा वो आई, उसने भी आक्रमण कर दिया। और एक प्रज्वार है, प्रज्वार उसका भाई, वो भी आ गया, उसने भी आक्रमण कर दिया। अब उस पांच फण वाले ने बार बार पुरंजन से कहा कि महाराज आप अपनी नगरी को बचा लेना, मैं अब लड़ नहीं सकता हूं, मेरे पास अब इतनी ताकत नहीं रही है। खूब कहा, परंतु भाई उसने ध्यान ही नहीं दिया और अंत में उसके मरने का समय आ गया। जब वो मरने लगा तो हाय हाय कर, अरे मेरी स्त्री का क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, इस स्त्री का क्या होगा, ऐसे अपनी स्त्री का चिंतन करते करते मरा। तो अगले जन्म में वो एक राजा की कन्या बन गया। देखो जो आदमी स्त्री का चिंतन करते हुए मरता है वो अगले जन्म में स्त्री होता है, और जो स्त्री का जो स्त्री पुरुष का चिंतन करते मरती है तो वो अगले जन्म में पुरुष होता है। ये कायदा है, भागवत में लिखा हुआ है ये। तो वो पुरंजन था वो स्त्री हो गया, और वो विदर्भ देश की राजकुमारी वैदर्भी बन गई, और उसके पश्चात उसका विवाह पांड्य देश के राजा के साथ मलयध्वज के साथ विवाह हो गया, और उसके सात लड़के हो गए। फिर अपना सब राजपाट अपने बच्चों को दे दुआ करके चंद्रभागा नदी के किनारे आकर तपस्या करने लगे, और अंत में वो पति मर गया तो वो रोने लग गई पत्नी। अब वो अभिज्ञात नाम का जो मित्र था वो ब्राह्मण बन करके आया, कहने लगा तू कौन है भाई? कि मैं तो एक राजकुमारी हूँ। देख तू राजकुमारी नहीं है, तू पिछले जन्म में पुरुष था, तेरा नाम पुरंजन था, मैं तेरा मित्र था, तू मुझको भूल गया और एक नगरी में घुस गया और एक औरत से प्रेम करने लग गया, तो तेरी ये दशा हुई कि आज देख तेरे पति के बिना तुझे रोना पड़ता है। अभी भी कोई बात नहीं, आ इधर आ, देख तू और हम दोनों एक हैं, तुम्हारे और हमारे बीच में कोई अंतर नहीं है। हंसौ वहन चत्वंचार्य सखायौ मानसायनौ, तुम और हम मानसरोवर से आए हैं भाई, जैसे तू है वैसे ही मैं हूं। बड़े बड़े पुरुषों ने तुम्हारे में और हमारे में कोई अंतर नहीं देखा है। ऐसे करके एक हंस ने दूसरे हंस को जगा दिया, उसको सावधान कर दिया और कहा कि माया ये सब माया सृष्टा, ये सब मेरी माया थी, न तो कोई नगर है, न उसमें कोई स्त्री है, न कोई पांच फण वाला सांप है, ये सब केवल एक मैंने माया दिखाई है माया। आओ मित्र आओ, तुम और हम गले मिल जाएं और देखो तो सही तुम्हारे में हमारे में कैसी एकता है, तुम हो वो मैं हूँ और मैं हूँ वो तुम हो। आओ आओ अपन वापिस मानसरोवर में जाकर बैठते हैं। ऐसे करके उसको दर्शन करा दिए। तो राजन तुम कुछ समझे कि नहीं इस बात से, इसका अर्थ समझे कि ना महाराज? हम तो ठन ठन पाल मदन गोपाल, कुछ नहीं समझे महाराज। नहीं समझे तो समझाते हैं। अब नारद जी कहते हैं क्या कि पुरंजन तो है जीवात्मा और अविज्ञात है वो परमात्मा, ये दोनों मानसरोवर में रहते थे। मानसरोवर में मतलब मन में रहते थे, अपने मन में अपने आप में रहते थे। अपने आप में रहना ये मानसरोवर है, मन भी नहीं, अपना आप, अपना जो आप अपने आप में थे। एक बार ये दोनों रवाना हुए तो ये नौ शरीर नौ छिद्रों वाला जो शरीर है ये शरीर रूपी नगर देख करके जीव उसमें मोहित हो गया कि ओह कितना अच्छा दरवाजा है, ये कितना अच्छा ये नगर है और कैसे विचित्र इसके दरवाजे हैं, और दरवाजों पर बैठी हुई स्त्री है वो स्त्री कौन है? वो बुद्धि है, बुद्धि। वो बुद्धि को देख करके मोहित हो गया और बुद्धि के साथ में 11 इंद्रियां हैं वो इसकी सहेलियां हैं, और पांच फण वाला जो सांप है वो पांच प्राण है, और 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियां ये दिन और रात है, रोज सांप पर आक्रमण करते हैं, ये रोज आक्रमण करते हैं, मर रहे हैं सब, सब मरना हो रहा है सबका। और फिर काल नाम की जो कन्या है जरा, वो बुढ़ापा है, वो है बुढ़ापा। और उसके पश्चात बताया कि भाई उस बुढ़ापे के बाद बताते हैं कि प्रज्वर माने बुखार आ गया। अब वो अपने स्त्री के लिए रोने लगा तो अगले जन्म में स्त्री हो गया। वो जो मन था वो विसूचि नाम का मंत्री है, और ये हाथ और पैर ये अंधे हैं जो इसके साथ साथ रहने वाले हैं। हाथ पैर में कोई ज्ञानेन्द्रिय थोड़ा ही है, तो हाथ पैर कर्मेंद्रिया है, कर्मेंद्रिया है। ऐसी बात होने लगी। तो भाई इसमें मानव शरीर में आए हो तो उस परब्रह्म परमात्मा को भूलो मत, उस भगवान को याद करो। मनुष्य यहाँ पर तीन प्रकार का कर्म करता है, पाप पुण्य और मिश्रित, और इसमें वो उलझ जाता है। एक दुख से पार नहीं होता जितने दूसरा दुख आ जाता है। और देखो जीवस्य न व्यवच्छेद है, संसार के दुखों से पिंड छूटता नहीं है। संसार का दुख कैसा है वो बहुत सुंदर बात लिखी है, धारण करे जैसी और हंसी आवे जैसी। जैसे एक आदमी कंधे पर एक बोरा लेके चलायो, चलते चलते ये थक गया, इसने यहां रख लिया, वो देखता अब आराम हो गया, अब आराम हो गया। फिर थोड़ी दूर चला, फिर थक गया तो फिर यहां रख लिया, फिर यहां रख लिया, फिर वो हाथ में रख लिया। तो जैसे अपने कंधे पर रहने वाले वजन का पिटारा, कभी इस कंधे पर तो कभी इस कंधे पर, कभी माथे पर रखता है, परंतु उसका वजन दूर नहीं होता। ऐसे ही संसार के दुख है, वो कभी उसका पिंड नहीं छोड़ते हैं। तथा सर्व प्रतिक्रिया, इसलिए कोई ये सोचे कि मैं संसार के सुखों से सुखी हो जाऊंगा, ये तो सुख वैसा ही होना है जैसे एक कंधे को आराम मिला तो दूसरे कंधे को तकलीफ होगी, बात वही आती है घूम फिर करके। इसलिए भाई संसार में आयो भगवान का भजन करो। प्राचीन वर्णी ने सुन करके बड़ा अचंभा किया, मां महाराज एक बात बताओ। नारद जी से पूछा क्या, कि वो बात यह है कि हम लोग कर्म करते हैं शरीर से, शरीर यहां मर गया, लोगों ने उठा के जला दिया, अब हमारे कर्म हम कौन भोगता है? वो शरीर से कर्म किए थे, भोगता कौन है? तो नारद जी ने कहा कि देखो करता कौन है, ये शरीर कर्म करता है कि तुम खुद कर्म करते हो? कि कर्म तो महाराज शरीर करता है। अच्छा शरीर कर्म करता है, इस बात को बोलता कौन है, कहता कौन है? शरीर कर्म करता है ये बात शरीर तो कहता नहीं है। शरीर कर्म करता है इसका ज्ञान किसको है? ये ज्ञान जिसको हो रहा है ना, ये ज्ञान जिसको हो रहा है वास्तव में वही जन्म लेता है और वही मरता है। कहते हैं देखो राजन, ये स्थूल शरीर तो यही खत्म हो जाता है, परंतु सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर दो शरीर और होते हैं। ये इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये है हमारे सूक्ष्म शरीर, और हमारा स्वभाव वगैरह होता ही होता है कारण शरीर। सारे कर्म आकर के सूक्ष्म शरीर में इकट्ठे होते हैं। अब इन कर्मों का फल भोगना होता है तब इसको ये शरीर मिलता है। शरीर भोगा यतन है, भोगा यतनम शरीरम। इंद्रियों के अंदर देखने की जो प्रवृत्ति है और देखने के जो संस्कार है और देखने का जो फल है उसको कब भोगा जाएगा? जब उसको शरीर मिलेगा तब। यूं इंद्रियां जहां टिकाव नहीं होगा तो वो नहीं कर सकते, नहीं भोग सकते अपने कर्म का फल। तो भोगती तो इंद्रियां हैं लेकिन आत्मा इनके साथ जुड़ा रहता है। जैसे आदमी का किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, साइकिल के एक्सीडेंट हो गया, अब वो ड्राइवर बोलता है गाड़ी का ड्राइवर के भाई मैंने तो तेरे को छुआ नहीं, गाड़ी से तेरा एक्सीडेंट हुआ है, मेरे को क्यों तुम उलाना देते हो? तो कहेंगे कि भाई गाड़ी को चला तो तू रहा था ना। मैं तो चला रहा था पर तेरी साइकिल से मेरी गाड़ी टकराई है, मैं थोड़ी टकराया हूं। कि भाई ये क्या बात करते हो, गाड़ी को तुम चला रहे थे, तुम सही चलाते तो एक्सीडेंट नहीं होता। ऐसे ही शरीर तो गाड़ी के समान है और ये जो स्टेरिंग है, ब्रेक है, ये है सूक्ष्म शरीर के समान और आत्मा है उसका ड्राइवर के समान। इसलिए आत्मा को भोगना पड़ता है। तुमको पता नहीं राजन, कभी कभी तुम स्वप्न में ऐसे ऐसे स्वप्न देखते हो जो संसार में कभी तुमने अनुभव ही नहीं किया। स्वप्न आया कि पानी के अंदर जा रहे हैं हम, पानी के अंदर। इसका अर्थ क्या है? कभी जल के जंतु रहे होंगे। स्वप्न आता कि वे आकाश में उड़ रहे हैं, कभी पक्षी रहे होंगे, उनके संस्कार पड़े रहते हैं। तो अदृष्टम अश्रुतम चात्र क्वचित मनसि दृश्यते, दे नहीं देखा हुआ, नहीं सुना हुआ, कभी कभी अपने मन के अंदर कुछ दिखाई देता है। इसका अर्थ है यथा तथानु मंतव्यम देश काल क्रियाश्रयम। उससे ये प्रतीत होता है किसी देश में किसी काल में हम यहाँ ऊपर नीचे गए हुए थे। इसलिए भाई जब तक मन बुद्धि और इंद्रियों का ये जो समुदाय है, ये समुदाय से आत्मा अपना संबंध विच्छेद नहीं करता, तब तक इसी को ही सुख दुख भोगना पड़ता है। नारद जी की बात सुनकर के प्राचीन वर्णी बड़े खुश हो गए और प्राचीन वर्णी ने कहा कि महाराज अब हम ये हिंसात्मक यज्ञ बिल्कुल नहीं करेंगे, ये भजनात्मक यज्ञ करेंगे, सत्संगात्मक यज्ञ करेंगे। बड़ा उनको प्रकाश मिला। और इधर भाई प्रचेतागण आ गए तपस्या करके, उनको उसने राज्य दे दिया और एकाग्र मना होकर गोविंद चरणाम्बुजम भगवान के चरण कमलों में प्रेम करके भक्ति करके और वो भगवान के धाम में पहुंच गए प्राचीन बर्री। ये निर्गुण भक्ति बताई, निर्गुण भक्ति। अब वापिस सगुण भक्ति में आते हैं। विदुर जी ने पूछा कि महाराज भगवान शंकर के उपदेश से गए थे प्रचेतागण, फिर उनका क्या हुआ? अरे उनका क्या बताएं, भगवान विष्णु उन पर इतने प्रसन्न हुए। एक तो भगवान शंकर के मुख से कहा हुआ योगादेश और एक इन बालकों ने पिता की आज्ञा मानी, ये कम भजन है क्या? अपने माँ बाप की आज्ञा मानना ये बहुत बड़ा भजन है, पति की आज्ञा मानना ये बहुत बड़ा सत्संग है। कई कई माताएं बोलती हैं कि हमको पतिदेव मना करें सत्संग में जाने के लिए तो हम उनकी आज्ञा को माने कि नहीं माने। यदि हम आज्ञा मानती है तो सत्संग से कथा से वंचित हो जाती है, और यदि हम आज्ञा नहीं मानती है तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने का दोष लगता है। क्या करना चाहिए? ये तो भ्रष्ट है, तत्व भ्रष्ट है, दोनों तरफ ही हमारे तो नुकसान ही हुआ, क्या करना चाहिए? तो भाई ये करना चाहिए कि आप अपने पतिदेव से आज्ञा लीजिए और उनको ये कहिए कि आप स्वयं सत्संग में चलो, आप स्वयं कथा में चलो। आप चलो तो देखो मैं भी कथा सुन लूंगी, आपके बिना मैं अकेली कथा में जाऊं तो क्या लाभ, आप भी आओ। वो कहेंगे कि देवी मेरे पास तो समय नहीं है, मैं तो दुकान में है, ऑफिस में है, दूसरा काम है, और तुम दोपहर में खाली रहती हो, तुम जाया हो तो फिर जो है आज्ञा मिल जाए तो आ जाओ। कथा सुनने के पश्चात, सत्संग सुनने के पश्चात आप घर में ऐसा माहौल बनाओ, ऐसा माहौल बनाओ कि आपके पति को ये लगे कि देखो जब से ये कथा में गई है, जब से ये सत्संग करने लगी, इसका स्वभाव सुधर गया। इसकी वाणी पहले बड़ी कठोर निकलती थी, अपमानजनक बोलती थी, ये घूर करके बोलती थी, बहुत प्रेम से बोलती है। उनके ऊपर ये असर पड़ना चाहिए कि सत्संग में जाने पर इनका व्यवहार सुधरा है, ये असर पड़ना चाहिए। ये जितना असर पड़ेगा वो स्वयं सत्संग में आओ, क्या उनकी छाया आएगी, छाया आना पड़ेगा उनको। हम लोग कहते हैं सत्संग का प्रचार करो, कथा का प्रचार करो, टीवी में दे देंगे, अखबार में दे देंगे, कागज छपा देंगे, विज्ञापन दे देंगे, और बड़े बड़े होल्डिंग पोस्टिंग क्या क्या होता है वो लगा देंगे। अरे वो सत्संग का असली प्रचार नहीं है, वो तो नाम का प्रचार है। असली प्रचार सत्संग का आप अपने घर में जाकर जो सुंदर व्यवहार करोगी वो आपका असली प्रचार होगा। स्थायी प्रचार होगा। आपके परिवार के लोग अपने आप सत्संग में आएंगे, भाई सत्संग में सुधार होता है। क्यों? बड़ी कर्कशा थी हमारी पत्नी, बड़ा सुधार हो गया। पुरुष सत्संग में जाएगा तो उसका स्वभाव वहां बोलेगा तो पत्नी पर असर पड़ेगा, व्यवहार में दूसरे लोगों पर असर पड़ेगा। ये असली प्रचार होता है। आपको सत्संग में जाने से क्यों रोकते हैं? वो देखते हैं कि सत्संग में चले जाते हैं, व्यवहार में तो कोई फर्क पड़ता नहीं, इसलिए वो खुला बोलते हैं कि आप क्यों जाते हो सत्संग में, भाई तुम्हारे क्या फर्क पड़ता है, मत जाओ। आप उनको अपनी सेवा से ऐसा पिघला दो, उनके चित्त में आएगा अरे मैंने भरी गलती की, इतने दिन मैंने सत्संग में रोका। और अकेली कभी मत जाओ, अकेली सत्संग में नहीं जाना चाहिए। पास पड़ोस की माताएं बहनों को साथ में लो, अपने बेटे को साथ में लो, और किसी को साथ में, अकेला कभी जाना ही नहीं चाहिए सत्संग में या कहीं भी। वैसे अकेला जाना फिर सत्संग के नाम पर हर कोई छूट दे देते हैं, तो भाई अकेला मत जाओ। माताओं की एक अलग ही मर्यादा होती है, अकेले मत जाओ। किसी से भी बात करो, अकेली बात मत करो, कोई न कोई साथ में रहना चाहिए। कितने ही बहुत ऊंचे महात्मा हैं, पिता हैं, दादा के समान हैं, परदादा के समान हैं, बहुत बढ़िया। महात्मा को प्रणाम करो, जमीन पर माथा टेक के प्रणाम करो, परंतु कायदे में रहो। उनसे भी बात करो तो देखो, बात करने का भी एक ढंग होता है। आंख से आंख मिलाकर बात नहीं करनी चाहिए, थोड़ी नजर दृष्टि नीचे रखनी चाहिए, चाहे कोई पुरुष हो चाहे स्त्री हो। पुरुष यदि स्त्री से बात करे थोड़ी सी नीचे नजर रखे, और स्त्री भी बात करे थोड़ी नजर हटा करके बात करे। ये आंखों में ही तो सब कुछ आकर्षण बसा हुआ है, क्या पता किस समय किसका क्या क्या आंखों से क्या भाव हो जाए, कोई पता नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि बहुत खतरे की घंटी है ये, तलवार की धार पर चलना है, अपने भावों को बिल्कुल वश में कर लेना है वो। इसलिए पहले से ही मर्यादा में चलो। तो अकेली बात मत करो, अकेली जाओ मत, और जो है अपने सीधी सीधी बात मत करो, थोड़ा सा जो है आंख को जो है चुरा करके बात करो, नीचे देख करके, थोड़ा तिरछा देख करके बात करो, सीधी बात मत करो। अस्तु। तो वे जो है हमारे प्रचेतागण वहां भगवान की तपस्या में लगे, तो भाई अकस्मात भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। आठ भुजा से भगवान आए। भगवान ने कहा कि भाई वरदान मांगो, वरदान मांगो। अब भगवान ने खूब कहा, अब देखो वरदान मांगो ये बात भी कह दिया, और साथ साथ में भगवान आशीर्वाद भी देते जा रहे हैं कि तुम दसों भाइयों में एक एकात्म भाव रहेगा। दिखने में दस हो लेकिन तुम दसों के दसों आपस में बहुत प्रेम से रहोगी और प्रेम से रहोगे। और इतना ही नहीं, ये भी कह दिया कि तुम्हारी जो कथा को सुनेगा उन भाइयों में बड़ा प्रेम नहीं रहेगा, और कहा कि तुम्हारा स्वभाव आपस में मिलता जुलता रहेगा। तुम जो है बहुत वर्षों तक तपस्या किए हो, तो इस तपस्या के फल से मैं तुमको सब प्रकार की सुविधा दूंगा। एक काम करना कि मारीसा के साथ में तुम्हारा विवाह हो, तो जो है तुम्हारा आपस में उस स्त्री को लेकर कभी सौहार्द घटेगा नहीं, प्रेम घटेगा नहीं। और कहा कि देखो घर गृहस्थ में रहो ना, तो मेरी चर्चा मेरी कथा मेरा सत्संग करते रहना, न मद वार्ता यात यामाना न बंधा ये गृह मता, मेरी चर्चाएं होती रहती है उस गृहस्थ के अंदर, कभी भी बंधन नहीं होता। गृहस्थ का बंधन तभी तक है जब मेरी कथा नहीं सुनो, मेरी वार्ता नहीं सुनो, संतों का उपदेश सुनकर तुम काम में नहीं लाओ, तभी तक ये बंधन रहता है। नहीं तो न मुह्यंती न शोचंती न रिष्यंती यतो गता। कोई हर्ष शोक नहीं होता, जो व्यक्ति सत्संग में लगे रहते हैं उनके कोई हर्ष शोक नहीं होता। आप प्रचेताओं ने उनको पहले प्रणाम किया, क्यों यही उन्होंने सीखा था भगवान से, शंकर जी से प्रणाम किया। खूब प्रणाम करने के बाद फिर कहा कि महाराज आप जैसे सत्पुरुष जिसको याद कर लेते हैं उनका तो भाग्य खुल गया महाराज, हम तो दीन है दीन, और आप दीन वत्सल हो, आप जिनको याद कर लेते हैं बस उनका तो भाग्य खुल गया। आपने हमसे ये कहा कि कोई वरदान मांगो, तो महाराज हम आपसे वरदान मांगते हैं कि आपकी माया के अंदर अटकने भटकने वाले हम लोग, गोता लगाने वाले संसार में कहीं भी पड़ जाए, पर हमको संतों का संग मिले और हमको आपकी कथा मिले। यत्रेद्यन्ते कथा मृष्टा तृष्णाया प्रशमो यत है, जब आपकी कथा मिलती है तो ये संसार के भोग मृग तृष्णा के समान हमको मिथ्या प्रतीत होने लगते हैं। कथा सुनी और संसार प्यारा लगा तो इसका मतलब कथा सुनी नहीं है, एक खाना पूर्ति की है। जाओ भाई अब भागवत की महिमा लिखी, जायाओ सुनियाओ, ऐसे दबाव से नहीं सुनना चाहिए, प्रेम से सुनो। प्रेम से देखो, नहीं सुनने से तो दबाव से भी सुनना अच्छा है, पर दबाव की अपेक्षा प्रेम से कथा सुननी चाहिए। कथा सुनो तो किसी के साथ बैर मत करो, उद्वेग मत लाओ। साफ लिखा निर्वैरम यत्र भूतेषु, इसलिए हमारा संतों का संग चाहिए। और आपका आपका जो है ताव का नाम समागम है, आपके जो लोग हैं उनके साथ हमारा समागम रहे, ये हमारी इच्छा है। तो भाई उस समय उन्होंने भगवान ने आदेश दे दिया, ठीक है जाओ तुमको सत्संग मिलेगा, ये वरदान दे दिया। देखो भगवान ने वरदान के लिए कहा तो कितनी बढ़िया बात मांगी इन्होंने, जो दुर्लभ चीज है। अरे संसार के भोग तो हमारे कर्मों के फल से यूं ही मिल जाएंगे, भगवान की भक्ति कोई कर्मों के फल से थोड़ा ही मिलती है, इसलिए उन्होंने भगवान के वरदान से मांगी। संत समागम कोई कर्मों के फल से थोड़ा ही मिलता है, ये तो भगवान की कृपा से मिलता है। भगवान वरदान के लिए कहे तो संसार की चीज नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि वो चीज तो हमको हमारे कर्म के फल से यूं ही मिल जाएगी। फिर उन्होंने जाकर मारीशा से विवाह किया। अब वो कल की कथा में आपने सुना ना कि दक्ष प्रजापति का बकरे का सिर था, दक्ष प्रजापति जहां भी जाए वो बकरे का सिर। ये बकरे का सिर क्यों लगाया? जो जरा घमंडी होते हैं ना वो अगले जन्म में जाकर बकरा बनते हैं, जो जरा घमंड करते हैं ना, मैं ऐसा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो बकरा हरदम मैं करता रहता, मैं। इसका मतलब ये पिछले जन्म में बड़ा घमंड करता था। तो दक्ष प्रजापति का मुंह बकरे का हुआ तो उसको बड़ी शर्म आई। तब वो दक्ष प्रजापति है भाई, वो आकर के प्रचेताओं का लड़का बन गया। उसको ये अधिकार है कि चाहे जाए जहां जिसको बेटा बनाए, चाहे जहां जिसको वो जो है पिता बनाए, ये प्रजापतियों को अधिकार है। तो वो प्रचेताओं के यहां आकर उसने जन्म लिया, और जन्म लेकर के प्रचेताओं ने कहा वाह बेटा, तू हमको बेटा मिल गया, हम तो भगवान की भक्ति करेंगे बेटा, तेरे आने से पहले हम भक्ति करते थे, अब हम फिर भक्ति करेंगे, भगवान से हमने यही वरदान मांगा। तो वे पश्चिम दिशा में जाजली के आश्रम में गए, जाजली नाम के एक ऋषि थे उनके वहां पर गए। कौन ये प्रचेतागण कैसे थे? उत्पन्न विज्ञाना, ये जब से पैदा हुए तब से उनमें ज्ञान पैदा ही हो गया था, ज्ञान एक बड़े ज्ञानी थे। वहां गए प्रचेतागण, पूछने लगे, वहां नारद जी मिल गए। नारद जी से कहा महाराज जी, नारद जी महाराज दुस्तरम भव सागरम, संसार से पार होना बड़ा मुश्किल है महाराज। गृहेशु प्रसक्ता नाम, गृहेशु प्रसक्ता नाम बहु सागरम दुस्तरम, घर में आसक्त रहे और संसार से पार हो जाए बड़ा मुश्किल लगता है। तो घर को तो हम छोड़िया है, अब संसार के पार होने में थोड़ा धक्का लगाइए, थोड़ी सत्संग सुनाइए। देखो भगवान के दर्शन किए हुए हैं, वो उनके कल्याण में संदेह नहीं है, परंतु एक सत्संग की पिपासा होती है। सत्संग एक ऐसी चीज है वो जिससे कभी तृप्ति नहीं होती। भगवान के दर्शनों से तृप्ति हो सकती है, पर सत्संग से तृप्ति नहीं होती। और सुने और सुने और सुने, कथा भी ऐसी है कि भाई कथा और सुने, कथा और सुने, इसे तृप्ति होती नहीं। ये क्या है? ये कथा की विशेष बात है, हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो नारद जी महाराज मिले तो उनसे सत्संग किया, तो नारद जी ने खूब बढ़िया सत्संग सुनाया। सत्संग में उन्होंने बहुत सी कल्याण की बातें बताते बताते एक बात कही कि यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। महाराज जी को ये श्लोक बहुत पसंद था, बहुत ही बढ़िया बात लगती थी नारद जी की कही हुई कि भाई जिस प्रकार से हम प्राणों को अन्न और जल देते हैं तो सारा शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाता है। अब कोई कहे कि भाई तुम्हारा तुम्हारा तो पेट पिचका हुआ है, तुम्हारे शरीर में बड़ी कमजोरी है, तुम तो ऐसे हो, क्या करो, बस हम भोजन करो, प्राण को भोजन और जल दे दो, सारे शरीर में सब चीजें बन जाती है। उसी प्रकार से एक भगवान की पूजा करो, सारे संसार की पूजा हो जाएगी। जैसे वृक्ष के जल के अंदर, जल के अंदर जड़ के अंदर जल देते हैं, वृक्ष की जो जड़ है उसमें जब जल पहुंच जाता है तो सारा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। ऐसे एक भगवान की आराधना में सबकी आराधना, सबकी पूजा हो जाती है। इसलिए आप लोग भगवान की पूजा करो, प्राणियों पर दया करो, दुखी प्राणी उन पर दया करो, और अपने प्रारब्ध में जो हमको मिल जाए उसमें संतोष करो। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दन है। भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, अपने में शांति रखो, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहो। इसलिए कहा है भाई कि भाई ठंडी बासी खाए के, सूखा टूका खाए के, ठंडा पानी पी, देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जीव। दूसरा ऐसा करता है, दूसरे की कार है, दूसरे की मोटर है, दूसरे की बिल्डिंग है, दूसरे के ऐसा है, कोई फायदा नहीं है। अपने को जैसा मिले वह भगवान के भजन में लगो अपने को। भगवान का भजन है ये बहुत ऊंची चीज है। सब ऐसाओं का, इच्छाओं का त्याग करो और भगवान के भजन में लग जाओ। प्रचेतागणों ने नारद जी से ये उपदेश सुना और नारद जी ये उपदेश सुना करके सीधे ब्रह्मलोक में गए। देखो ये एक रहस्य की बात है कि जब कभी नारद जी सत्संग सुनाते हैं ना, किसी को विशेष बात सुना, सीधे ब्रह्मलोक में जाते हैं, आए फिर ब्रह्मलोक में गए, नहीं तो कहें इधर आए उधर गए, ऐसे गए। रामायण में भी ऐसा ही आता है, भागवत में भी ऐसा ही आता है। ब्रह्मलोक में क्यों जाते हैं? ब्रह्मलोक में अपने पिताजी को सावधान करने जाते हैं, पिताजी आप ब्रह्मलोक में बैठे हुए हो, आप ये सोचते होंगे कि हम बहुत ऊंचे लोक में, ऊंचे लोक में ब्रह्मलोक वाला नहीं होता, ऊंचे लोक में तो वो बैठा है जो सत्संग के अंदर बैठा हुआ है, वो ऊंचे लोक में है, जो भगवान की कथा में बैठता है वो ऊंचे लोक में होता है। इधर प्रचेतागण भगवान का ध्यान करते करते, भगवान का कीर्तन करते करते भगवान को प्राप्त हो गए। अब देखो कथा में नया मोड आता है, ध्यान से सुनना आप लोग। भागवत में तो वही कोई ऐसी चीज लगी नहीं जहां ध्यान देने की जरूरत नहीं लगती हो, परंतु फिर भी कहीं कहीं ऐसे मोड आते हैं, जैसे कहीं लिखा हुआ है ना कि आगे खतरनाक मोड, थोड़ा सावधानी से चलो। तो ऐसे ही भाई भागवत में भी कई ऐसे ऐसे मोड आते हैं कथाओं में, उनका ठीक आपस में सामंजस्य बैठाना, किस तात्पर्य से ये बात बोलते हैं, ये बड़ी विचित्र बात है। अब देखो यहां है तो बहुत कम श्लोक, परंतु किस प्रकार से ये चले हैं सुखदेव जी महाराज, बड़ा विचित्र रहस्य है। सुनो देखो, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये हमने तुमको उत्तानपाद का वंश सुनाया, अब मैं तुमको प्रियव्रत का वंश सुनाता हूं। ये वो प्रियव्रत था जिसने नारद जी से ऊंची से ऊंचे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुना और वो ब्रह्म तत्व में स्थित हुआ और फिर वह पृथ्वी का शासन करने लगा और बड़े भारी ऐश्वर्य को प्राप्त हुआ। ये बात इति कह दी। अब कहने के बाद क्या कहते हैं? अब ये बात हमारे मैत्रेय जी ने नहीं कही है, सुखदेव जी ने कही है। सुख उवाच, ये बहुत देर के बाद आया है। आप देख लो चौथे स्कंद से चलो, चलते चलते सुखदेव उवाच बहुत कम, नहीं के समान ही आया है, यहां आया है। अब क्योंकि तीसरे स्कंद के पांचवें अध्याय से विदुर मैत्रेय अध्याय, विदुर मैत्रेय संवाद चालू हुआ है, तो वहां पर विदुर मैत्रेय चले, सूत जी की बात चली, सुखदेव जी की बात बहुत इक्की दुक्की जगह आई है। यहां सुखदेव जी महाराज आगे प्रियव्रत की बात कह गए। सुखदेव जी महाराज क्या है, उस संवाद में डूबे हुए बोल रहे हैं। डूबे हुए बोल करके और प्रिय व्रत की बात सुनाना चाहते थे, जितने उनको याद आया कि अरे वहां तो एक बात और हुई थी। क्या हुई? इमान तो कौशार विणोपवर्णिताम क्षत्ता निशम्या जितवाद सत्कथाम प्रवृद्ध भावो श्रुकला कुलो मुनेर दधार मूर्धना चरणम हृदा हरे। ये विदुर जी महाराज जब इस प्रकार से कथा सुने तो कथा सुनते सुनते इतने आनंद में मग्न हो गए। विचार आया, अरे प्रचेतागण, 10 भाई एक साथ रहे, 10 भाइयों ने मिलकर के भगवान की भक्ति की और एक स्त्री के 10 पति होकर इतना प्रेम रहा और फिर अपने बेटों को राजपाट छोड़ छाड़ करके वापिस भी तो भक्ति में लग गए, सत्संग में लग गए। और एक हम है जो एक अंधे भाई को छोड़िया है और वो अपना कहां जाने, वो कैसे रहता होगा। अरे हम उनके भाई हैं तो सत्संग करने के लिए, उद्धार करने के लिए भाई है। भाई मन में बड़ा विचार आया और वो चरणों में गिर करके विदुर जी महाराज कहने लगे कि वाह महाराज, आपने हमको अंधकार से दूर हटाकर प्रकाश में लाकर बैठा दिया, बड़ी करुणा की मैत्रेय जी महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूं। उनके आंखों से आंसू झर झर गिरने लगे विदुर जी के। एक तो मैत्रेय जी को छोड़ के जा रहे हैं, एक उन्होंने सत्संग के प्रकाश में अपना और अपने संबंधियों का जीवन देखा, जीवन देख करके नया होश आया कि अरे मुझे तो परिवार में जाकर के इनका उत्थान करना चाहिए। देखो इतना ज्ञान लिया, सत्संग सुना, तो उनको तो वैराग्य होना चाहिए परिवार से, एवं परिवार में गए वो। देखो वैराग्यवान होकर परिवार में गए, वैराग्यवान हो गए अब परिवार में गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि विदुर जी जब अपने हस्तिनापुर गए, स्वानाम निदृक्षु प्रयय, अपने आत्मी लोगों के पास गए और ज्ञाति नाम निर्वृताशय है, उनका आशय निर्वृत्त हो गया, उनके अंतःकरण से संबंध विच्छेद हो गया, सब वासनाएं खत्म हो गई थी। ऐसा ये पवित्र आख्यान है। अब जो है राजा परीक्षित प्रश्न पूछते हैं, कि महाराज ये हमारे प्रियव्रत जी महाराज हैं, ये इतनी ऊंची नारद जी से ब्रह्म विद्या प्राप्त किए और फिर वापिस वो राज्य में गृहस्थ में फंसे, तो महाराज ये ऐसे कैसे हो सकता है? उस तुरीय परब्रह्म परमात्मा में स्थित होने के बाद क्यों वो घर गृहस्थ में फंसेगा, क्यों वो राज्य के लिए जो सिंहासन पर बैठेगा? उनको एक महान आनंद मिल गया तो फिर छोटे में यहाँ क्यों आएगा? अच्छा यहाँ आ गए तो न कुटुम्बे स्प्रिया मृति ही, एक बार भगवान में जब चस्का लग जाता है, प्रेम का चस्का लग जाता है, तो फिर उसके बाद वो भगवान को छोड़ नहीं सकता है। आप में इतने आदमी है जो लोग नित्यनेम करने वाले हैं, थोड़ा बहुत 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट, माताएं बहने भाई लोग, जब आप नित्यनेम करते हैं तो आप कभी छोड़ नहीं सकते उसको। ये क्या बात है? क्योंकि भगवान का प्रेम है ही ऐसा। आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे प्रेम है, हमको भी नहीं लगता कि हमारा कोई प्रेम है, पर आप नित्यनेम छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं छोड़ सकते आप। किस बात का डर है? एक बात का डर है क्या? अरे भगवान का इतना सा तो काम करता है, ये हम कैसे छोड़ दें? हमने स्वीकार किया है, कैसे छोड़ दें? आप तो बहुत बातें छोड़ते हो भाई, बहुत बातें छोड़ते हो, पर नित्यनेम आप नहीं छोड़ते, नित्य नियम आप करते ही हो। ठाकुर जी को रोज नहलाना धुलाना और उनको लड्डू का भोग लगाना और ये गोपाल सहस्रनाम या और कुछ पाठ करना, जो आपका नियम वो आप करते ही हो, क्यों भाई? आप ये भगवान है ही ऐसे, एक बार भगवान में जब हम लग जाते हैं उसको छोड़ नहीं सकते हैं। नित्यनेम को आप बढ़ा सकते हो, बढ़ा सकती हो, लेकिन आप जो स्वीकार किया उसमें कम नहीं कर सकते। तो यही बोलते हैं कि महाराज भगवान के चरणों में प्रेम होता है, वो महाराज जो है संसार को नहीं चाहता, परंतु मुझे पूछना यह है, संशयम महान, मेरे संशय यह है कि भगवान के चरणों में प्रेम था तो फिर वे हे ब्रह्म स्वरूप सुखदेव जी महाराज वो अपने स्त्री पुत्र आदि में क्यों आसक्त हो गए और भगवान में उनकी बुद्धि भी कैसे स्थिर रह गई, संसार में भी जो है रह गए और भगवान में उनकी बुद्धि स्थिर रह गई। बहुत मुश्किल काम है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं वाढ़ ठीक बात है, परंतु प्रियव्रत के लिए कुछ दूसरी बात थी। परीक्षित, भगवान के चरणों में एक बार प्रेम हो जाने के बाद ताम शिव तमाम पदवी न प्रायण हिनवंती, वे उसका त्याग नहीं करते हैं। महापुरुष लोग भगवान की उस ऊंची पदवी का त्याग नहीं करते हैं। परंतु भाई यहां प्रियव्रत ने नारद जी से जब परम तत्व का उपदेश ले लिया था उसके बाद वे आजीवन संन्यास की दीक्षा लेने ही वाले थे, उसी समय में उनके पिता मनु महाराज आए और मनु ने उनको समझाया, बेटा तुम ये काम करोगे संन्यास ले लोगे तो ब्रह्मा जी ने मुझे सृष्टि के ऊपर सृष्टि के विस्तार के लिए आदेश दिया था, उसका क्या होगा, मैंने अपने पिता की बात मानी तुम भी मेरी बात मानो। तो उस समय उन्होंने मना किया कि महाराज मुझे तो आ बात जस नहीं रही है, मैं क्या करूं। नहीं वो अभ्यनंदत, उन्होंने उसका अभिनंदन नहीं किया, यद्यपि तद अप्रत्याम नातव्यम, यद्यपि उनकी बात का विरोध करना उचित नहीं था परंतु हमारे प्रियव्रत तो माने ही नहीं। तब जो है उन्होंने मनी मन में भगवान का ध्यान किया, मनु जी ने ब्रह्मा जी का ध्यान किया और ब्रह्मा जी की तो ये इच्छा रहती है कि संसार का विस्तार हो। तब गुण विसर्ग से परिवृंगणानु ध्यान व्यवसित सकल जगत अभिप्राय है, ब्रह्मा जी महाराज वो सारे जगत के विस्तार की कल्पना करने के लिए वहां से नीचे अपने स्थान से नीचे आकर के और यह इसके पास प्रियव्रत के पास पहुंच गए। उनके साथ में सिद्ध गंधर्व साध्य चारण मुनि ऋषि सब पहुंच गए। अब ब्रह्मा जी सबके बीच में बैठ करके और प्रियव्रत को वो बड़े प्रेम से बोलने लगे, देखो बेटा मेरी बात को तुम बहुत ध्यान से सुनो, मेरी बात में कोई दोष मत देखना, एक बात बताता हूं, मैं हूं, मेरे साथ तुम जितने जितने ऋषियों को महर्षियों को और सब देवताओं को सिद्ध गंधर्वों को साध्य चारणों को देखते हो ये सब उस भगवान की आज्ञा के पालन करने के लिए विवश रहते हैं, भगवान की आज्ञा का और भगवान के विधान का कोई व्यक्ति किसी भी बल के द्वारा अतिक्रमण नहीं कर सकता, और हमारे प्रारब्ध में जो सुख और दुख आदि शोक वो आदि के क्षण लिखे वो तो होकर के ही रहते हैं, सुख आना है आएगा, दुख आना है आएगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता, किसी बल पर नहीं मिटा सकता। जैसे बैल डोरी में बंधे रहते हैं ऐसे हम भगवान के शासन में बंधे हुए हैं। तुम्हें यदि भगवान में प्रीति है तुम संसार की आसक्ति का त्याग किए हुए तो बहुत अच्छी बात है। अरे संसार की आसक्ति का त्याग करो, संसार का त्याग क्यों करो, संसार के त्याग में बड़ी चीज नहीं है, संसार की आसक्ति का त्याग करो। मुक्तो वितावत विब्रे विब्रिया स्वदेहम आरब्धम अस्नन अभिमान शून्य है। अरे जीवन मुक्त महापुरुष के सामने भी प्रारब्ध के द्वारा आने वाली परिस्थिति तो आती है ना। यदि तुमको आत्म कल्याण करना है, अपनी इंद्रियों को जीत करके तुम गृहस्थाश्रम में एक किले में बैठ करके अपने शत्रुओं को जीत सकते हो, और यदि अपने इंद्रियों से पराजित हो तो भाई जंगल में जाकर भी तुम विषयों का ध्यान करोगे तुम्हारा पतन होगा। इसलिए इंद्रियों का तो संयमन करो, ध्यान तुम भगवान के चरणों का करो, और अपने अंदर उठने वाले काम क्रोध लोभ मोह आदि विकार है इनका सामना करो, और इनका सामना करने में शासन करते हुए तुम सोचो कि मैं अपने आप का राजा हूं। और मेरे शत्रु मनुष्य नहीं है, मेरे शत्रु ये मेरे विकार हैं, इंद्रियों में उठने वाली जो विषया शक्ति है ये मेरे खास शत्रु है, ऐसा समझ करके तुम ये शासन करो। ये लोक परंपरा से चली आ रही बात है, इसका तुम निर्वाह करो। ब्रह्मा जी ने कह दिया, तब उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर उसे स्वीकार कर लिया और फिर उसके बाद वे राजगद्दी पर बैठ गए। परंतु नित्य निरंतर आदि पुरुषस्य अंग्री युगला नवर्त ध्यानानुभावेन परिरंदत कषाया शय है, भगवान का ध्यान करते रहने से उनके अंदर के सारे मैल समाप्त हो गए थे। उनका विवाह हुआ, उनके 10 बेटा हुए, आग्निंद्र इद्मजिव यज्ञबाहु महावीर हिरण्यरेता घृतस्पृष्ट सवन मेधातिथि वीति होत्र और कवि, ये 10 लड़का हुए। और एक कन्या भी हुई जिसका नाम था ऊर्जस्वती, ये 11 संतान हुई। 11 संतानों में 3 संतान तो ऊर्ध्वरेता ब्राह्मण बन गए, परमहंस कोटि में चले गए, और बाकी जो 7 रहे वो अपने पिता की सेवा में रहे। पर नित्य निरंतर प्रियव्रत तो नारद जी के द्वारा दिए हुए ज्ञान को भूले नहीं, उसी में ही लगे रहे। उनका एक विवाह और हुआ था, उस स्त्री से उनके उत्तम तामस और रैवत 3 बेटा हुए। सुयोग से तीनों ही बेटा 8वें स्कंद में बताया जाएगा कि वे मनमंत्राधिपति हुए। परंतु इतना होते वे भी उनमें एक थी कि उनकी जो पत्नी थी जिसका नाम बधिष्मती था, वो उसके हाव भाव कटाक्ष के ऊपर बहुत मोहित हो गए थे। इस कारण से आने वाले काल को भी वो अपने स्त्री के हाव भाव में भूल गए। अब देखो बताते हैं, एक बार उनके मन में विचार आया कि इस पृथ्वी पर आधी जगह अंधेरा रहता है, आधी जगह पर प्रकाश रहता है, तो ये दिन को भी मैं रात को भी मैं दिन बनाऊंगा। ऐसा विचार करके सूर्य की उन्होंने परिक्रमा की, उस परिक्रमा के करने पर 7 द्वीप बन गए, एक जम्मू द्वीप, एक प्लक्षत द्वीप, एक शालमली द्वीप, एक कुशत द्वीप, एक क्रौंचत द्वीप, एक शाकत द्वीप, एक पुष्करत द्वीप, ये 7 द्वीप बन गए और 7 ही सागर बन गए। द्वीप तभी होते हैं जब चारों तरफ पानी होता है और बीच में जो पृथ्वी का अंश होता है वो द्वीप कहलाता है। तो पहला खारा समुद्र, दूसरा ईख के रस का समुद्र, तीसरा सुरा का समुद्र, चौथा घी का समुद्र, 5वां दूध का समुद्र, 6ठा है वो दही का समुद्र, और 7वें मीठे जल का समुद्र। ऐसे 7 समुद्र हो गए और 7 द्वीपों पर अपने 7 बेटों को राज्य सुपुर्द कर दिया, और वो फिर जाकर के भगवान के भजन में लगे और उनको बड़ी ग्लानी हुई। अरे मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था कि अपने शत्रुओं को जीतते हुए तुम राज्य करना, अपने आंतरिक शत्रुओं को, और मैं अपने स्त्री के सामने पराजित हो गया। आत्मनिर्वेदम, उनको बड़ा जो है निर्वेद हुआ, वैराग्य हुआ। ओहो, इंद्रियों की भूख तो कभी शांत होने वाली नहीं है, और जिसमें स्त्री की आसक्ति किसी की एक बार हो जाए और फिर वो आसक्ति उसकी समाप्त हो जाए, असंभव बात है। ओहो, एक स्त्री का मैं क्रीड़ा मृग होकर के उसके लिए एक मैं खेलने का पात्र बन गया। धिगमाम 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 इति गर्यान चकार है, मुझे धिकार है, इतने बड़े देश का राजा, भूमंडल का राजा, और एक स्त्री के सामने मैं एक नाचने वाला सा हो गया। मन में बड़ी ग्लानी हुई और वो फिर भगवान के भजन में लग गए। वो ग्लानी, वो वैराग्य और वो नारद जी का सत्संग इतना काम आया। देखो लोग कहते हैं सत्संग क्या काम आया, और हम कहते हैं रुपया क्या काम आता है, रुपया कमाते हो क्या काम आता है, कि रुपया हमारे कभी आफत में काम आता है, ऐसे सत्संग भी आफत में काम आता है। सत्संग है वो आफत में काम आने वाली चीज। आफत क्या, एक तो संसार में खूब आसक्ति हो जाए और सत्संग करने वाला हो तो उसकी आसक्ति बहुत जल्दी मिटती है, बहुत अच्छा उसको जल्दी वैराग्य होता है, बहुत जल्दी सावधानी आती है। सत्संग करने के बाद भी संसार में आसक्ति रह जाए, वो आसक्ति मिटनी सुगम होती है। बिना सत्संग किए हुए आसक्ति पहाड़ जैसी होती, मिटना बड़ा मुश्किल है। स्वयं यहाँ पर कह दिया कि वे नारद जी के उपदेशों को खूब हृदय में धारण किए, गृहित हरि विहारानुभाव है, भगवान की लीलाओं को खूब उन्होंने चिंतन में ला करके जो नारद जी ने उपदेश दिया उसके अनुसार उन्होंने जीवन व्यतीत किया। अब जो जम्बूद्वीप के राजा थे आग्नेन्द्र, जो कि प्रियव्रत के सबसे बड़े पुत्र थे, उन्होंने पृथ्वी का पालन किया। एक बार वे वहां तपस्या करने के लिए गए, उनके सामने अप्सरा आई जिसका नाम था पूर्वचित्ती। ये अप्सरा आई उनकी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन वो उस अप्सरा में फंस गए। अप्सरा में फंस गए तो उनको परब्रह्म परमात्म तत्व का ज्ञान नहीं हुआ और उस अप्सरा से उनके 9 लड़के पैदा हुए, नव पुत्रान अजनयत, 9 बेटा हुए। और इन 9 बेटों का विवाह उसने मेरु की पुत्रियां थी 9 उनके साथ कर दिया। तो सबसे बड़ा बेटा था नाभि। नाभि ने भगवान के आराधना की कि हमारे कोई संतान नहीं है, तो यज्ञ किया एक, और भगवान को उसमें यज्ञ में आमंत्रित करने के लिए किया, और कोई बात नहीं थी उनके मन में, तो भगवान प्रकट हो गए। अब भगवान जब प्रकट हुए तो बड़ी खुशी हुई उनको। सबसे पहले तो वो ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने भगवान को कहा कि महाराज आज आपने हमको दर्शन दे दिए, हम तो निहाल हो गए, हम आपसे एक चीज मांगते हैं। क्या? देखो हर प्रार्थना में, हर प्रार्थना में, हर याचना में एक एक भिन्न भिन्न बात मिलेगी भागवत में। तो हमारे ऋत्विक लोग क्या मांग रहे हैं? हमारे ऋत्विक लोग एक प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज जब कभी हमको छींक आए, जब कभी हमको छींक आए, हमको उबासी आए, कभी हम गिरते हुए हो, कभी हम फिसलते हुए हो, और कभी हमारे पर कोई आफत आए, तो सबसे पहला हमारे मुख से आपका नाम ही उच्चारित होना चाहिए। इसलिए जो कई लोग बोला राम 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 राम, ऐसा उबासी लेते हैं, उबासी लेते हैं तो ऐसा ही होता है। अकस्मात गिरते हो, अकस्मात कोई सांप बिच्छू खाता हो, तो अब जो है आपका नाम हमको याद आना चाहिए। का तथास्तु। दूसरी बात मांगो। क्या महाराज? दूसरी बात यह है हमारे राजा के कोई संतान नहीं है, तो हम राजा के लिए आप जैसी संतान चाहते, आप जैसा ही बेटा हो जाए। भगवान ने कहा भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मेरे जैसा कहां से लाऊंगा? कोई दूसरी फैक्ट्री तो है नहीं मेरे जैसी कोई, जहां प्रोडक्शन होता हो। मेरे जैसा तो मैं ही हूं। माया सदृशो भूयात इति मम अहम एवाभी रूप है। मेरा रूप तो केवल मैं ही हूं, इसलिए मैं स्वयं ही इनका बेटा बनकर के आ जाऊंगा। क्या? बस महाराज निहाल, आप बेटा बन जाएंगे, फिर कहना ही क्या है, भगवान अदृश्य हो गए। थोड़े दिनों के बाद ऋषभ देव जी का अवतार हुआ, भगवान का ये स्वरूप था। योगेश्वर जो है ऋषभ देव जी महाराज जब अवतार लिए तो इंद्र को उनसे थोड़ी स्पर्धा होने लग गई। क्यों? कि प्रजा में बरसात नहीं होती थी, बरसात नहीं होने से ऋषभ देव जी ने बरसात कर दी। तो ऐसी स्थिति में ब्रह्मा ये इंद्र के मन में जलन पैदा हो गई। इंद्र ने देखा कि अरे मेरे बिना ही बरसात कर ली, ऐसे उनके मन में जलन पैदा हो गई। और इधर उनके पिता थे नाभि, उन्होंने उनका राज्याभिषेक कर दिया और राज्याभिषेक करके स्वयं भगवान का भजन करने के लिए चले गए। समाधि योगे नर नारायणाख्यम भगवंतम वासुदेवम उपासीन है तन महिमानम अवाप है। भगवान वासुदेव की महिमा को प्राप्त हो गए नाभि। तो अब ऋषभ देव जी राजा हो गए। राजा हो गए तो भाई वहां उनका विशेष प्रभाव बढ़ने लगा। तो जो इंद्र पहले उनसे नाराज हुआ था वही इंद्र समझने लगा कि ऋषभ देव जी से नाराजगी करते तो मैं यहाँ कोई बढ़िया नहीं कर सकता, नाराज होके क्यों रह रहे, प्रेम से ही रह सकते हैं। तब इंद्र ने अपनी कन्या का विवाह ऋषभ देव जी के साथ किया और ऋषभ देव जी के 100 बेटा हुए। वो 100 बेटों में भरत सबसे बड़े बेटा थे और 9 योगेश्वर हुए और 80 थे वो कर्म के द्वारा, 81 तीर्जायन्ते या 81 थे वो ब्राह्मण हो गए, कर्म से ब्राह्मण हो गए। देखो कर्म से जातियां नहीं बदलती हैं, यह एक दो अपवाद ही है। कोई कहता है कि साहब हम ब्राह्मणोचित कर्म करके हम तो ब्राह्मण ही हो जाएंगे, असंभव बात है। जाति नहीं बदलती, जाति का निर्माण तो जन्म से ही होता है। पर ये हो गया ना, ये एक विशेष ही बात बताइए, कोई अपवाद ही है ये। इसलिए कहा कि इमे सर्वे ब्राह्मणा बभूहु, ये 81 थे विशुद्ध कर्मा कर्म विशुद्धा यज्ञशीला महाश्रोत्रिया महाशालीना ब्राह्मणा बभू। तो 81 ये हो गए, 9 योगेश्वर हो गए, 81 और 9 90 ये हो गए भरत राजा हो गए और 9 उनकी सेवा में रह गए। ऐसे 100 पुत्रों का इनका पूरा हिसाब बैठता था। एक बार उन्होंने अपने सब लोगों को बुलाया, बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की सभा लगी हुई थी ब्रह्मावर्त क्षेत्र में, ज्ञानियों की सब सभा लगी हुई, उसमें अपने 100 बेटों को बुला करके ऋषभ देव जी ने वहां उपदेश दिया। कहा देखो बेटा, ये मानव शरीर मिला है ये विषय भोग के लिए नहीं मिला है, मानव शरीर में आया हुआ प्राणी विषय भोग में जो पड़ता है उस विषय भोगी को वैसा ही सुख मिलता है जैसे कौवे को विष्ठा के अंदर सुख मिलता है, जैसे कुत्ते को विष्ठा खाने से सुख मिलता है, वही सुख सबको मिलता है, वही सुख मिलता है, इससे ज्यादा कोई सुख नहीं मिलता है। ब्रह्म सौख्यम त्वनंत्यम, ब्रह्मानंद एक ऐसा है कि जिसकी कोई तुलना किसी से नहीं की जाती है। और कहा बेटा यहाँ संसार में सावधान रहना, ये स्त्री आदि की जो आसक्ति है ये सीधी नरक में ले जाने वाली होती है, इसलिए जो स्त्रियों में आसक्त पुरुष होते हैं उनसे पहले से ही दूर रहना चाहिए और अपने द्वारा कोई विकर्म न हो जाए, विपरीत कर्म न हो जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अपने स्वरूप से नीचे उतरना ये सबसे बड़ा अपना अपमान समझना चाहिए, अपने मन को विषयों की तरफ जाते हुए रोकना चाहिए। और स्त्री का पुरुष में और पुरुष का स्त्री में जो मन होता है यही सबसे बड़ी गांठ मानी गई है। पुंसे स्त्रिया मिथुनी भाव मेतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु, इसलिए भाई इस गांठ के अंदर फंसे नहीं ऐसा अपना मन रखना चाहिए कि कर्मानुबंध दृढ़ आष्टिशेत है, आष्टिशेत है माने इसको ढीला करो, इस गांठ को खोल लो और विचार करो कि मेरा स्त्री आदि के साथ क्यों संबंध है, कल्याण करने के लिए संबंध है, आसक्ति करने के लिए नहीं है। गुरु के साथ, माता पिता के साथ, स्त्री के साथ और किसी के साथ भी, पति के साथ जो संबंध है वो एक दूसरे का कल्याण करने के लिए है। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, वो गुरु गुरु नहीं है जो अपने शरणागत शिष्य के कल्याण में नहीं लगता है, वो गुरु है ही नहीं। गुरु माँ हमारे गुरु जी है साहब, ऐसे गुरु जी से पार नहीं पड़ेगी, ऐसे चेला से भी पार नहीं पड़ेगी। चेला गुरु का कल्याण करे, गुरु शिष्य का कल्याण करे, दोनों कल्याण मार्ग में चल दे तब तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही पिता है वो पुत्र का कल्याण नहीं देखता तो किस बात का पिता है भाई। ऐसी माँ है वो पुत्र का कल्याण ही देखे, मोह के अंदर न फंसे। नमोचेद यह समुपेत मृत्यु, जो अपने इस मृत्यु के खतरे से सावधान न करे वो वास्तव में ये संसार के संबंध कई काम के नहीं है। और बताया कि देखो तुम इस भरत को राजा बना देना और तुम सब इसके सेवा में रहना, ऐसी उन्होंने शिक्षा दी और एकदम मौन व्रत है, वो मौनी हो गए और तूष्णिम बहु है, चुपचाप रहने लगे। दक्षिण दिशा में चले गए जहां कोई उनका परिचय नहीं है, ये परमहंस कोटि के महात्मा थे ऋषभ देव जी महाराज। बहुत सुकुमार उनका चरण, भगवान का ही तो अंश, भगवान का ही रूप था ना, और मुखमंडल पर दिव्य उनका तेज था। और वे जब वहां रहते थे तो उनके पास में अनेक प्रकार की सिद्धियां थी। वो मलमूत्र करते थे तो 40 कोस में मलमूत्र की सुगंध जाती थी, ऐसी उनके पास सिद्धियां थी। गो मृग काक चर्या व्रजन तिष्ठन आसीन शयान, क्या करें वो कभी गाय के समान, मृग के समान, कौवे के समान बैठना उठना सोना, ऐसी ऐसी उनके पास सिद्धियां थी। परंतु उन्होंने उन सिद्धियों का कोई उपयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि भाई सिद्धियों के द्वारा पता नहीं कब क्या आदमी धोखा खा जाए। सुखदेव जी महाराज से पूछा परीक्षित ने कि महाराज सिद्धियों से हर कोई आदमी तो धोखा खा सकता है, जो आत्माराम पुरुष है वो कैसे धोखा खाते हैं? देखो आत्माराम पुरुष होते हैं वो केवल अपने लिए नहीं होते, वो दुनिया के लिए होते हैं। वो केवल अपने लिए नहीं होते, दुनिया के लिए भी होते हैं। वो देखते हैं हमारे पास सिद्धियां आएंगी और लोग हमको अच्छा मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, आदर्श मानते हैं, तो ये लोग देखेंगे कि जिसके पास सिद्धियां होगी वही बड़ा होता है। किसी साधु के प्रवचन में खूब भीड़ होती हो, खूब उसके भगत होते हो, खूब उसके पास द्रव्य पदार्थ आता हो, लोग ये साधु बड़ा है। इस साधु के बड़प्पन का हमने थर्मामीटर क्या लगाया, परीक्षा क्या की जगत के वैभव से की, तो भाई वो जो है आदर्श नहीं हुआ, वो संत का जीवन आदर्श नहीं हुआ। इतने आदमी आते हैं साहब इनके तो, अरे ये थोड़ा ही उनकी विशेषता है, उनकी विशेषता कुछ और होगी। परंतु इतने आदमी आते हैं, बड़े बड़े आदमी पीछे रहते हैं, बड़े बड़े राजकीय लोग, एहलकार लोग इनकी बात मानते हैं, राज में इनकी चलती है, ऐसा है वो, बहुत बड़े महात्मा है साहब। क्या सिद्धियों के द्वारा किसी को बड़ा मानोगे तो सिद्धियां बड़ी हुई है, वो संत का बड़प्पन नहीं हुआ। इसलिए इन सिद्धियों के द्वारा जो है कि सिद्धियों से किसी को प्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कभी भी हमको धोखा दे सकती है। पत्युर जाए व पुरुष चली, कैसा उदाहरण दिया है भाई, जैसे कोई खराब स्त्री है वो किसी पति को धोखा दे करके पर पुरुष के पास चली जाए, ऐसी ये सिद्धियां होती है। और ऐसा ही हमारा मन होता है, ये मन हमको कब धोखा देकर सिद्धियों में चला जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए भाई सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो वे हमारे ऋषभ देव जी महाराज जंगलों में खूब घूमते रहे, और घूमते घूमते वो जो है जंगल में रहे, वहां जंगल में बांस की रगड़ से आग लग गई, उस आग में उनका शरीर चला गया और उसमें उनके कोई फर्क नहीं पड़ा और शरीर उनका भस्म हो गया। कलयुग के अंदर एक अर्हत नाम का राजा होगा, वो ऋषभ देव जी की क्रियाओं का भीतर में क्या भाव है ये बात समझेगा नहीं, और वो वेदों की निंदा करेगा, ब्राह्मणों की निंदा करेगा, और वे आचार विचार से शून्य होकर लोगों में पाखंड फैलाएंगे। पर कुछ भी हो, ऋषभ देव जी महाराज ने तो यहाँ पर धर्म की बहुत स्थापना की है, जिसमें भगवान की भक्ति को विशेषता से उन्होंने स्थान दिया है। भाई जो इस ऋषभ देव जी के आख्यान को सुनता है उसके अंदर भगवान की भक्ति जागृत होती है। वे भगवान भाई अपनी मुक्ति तो सहज में किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन बिना अधिकारिता के किसी को भक्ति हर किसी को नहीं देते। मुक्ति तो कर देते हैं, भक्ति नहीं देते। अरे कोई आदमी सड़क पर बैठा हुआ है, मांगता रहे हमको कुछ दो, पीछे ही पड़ जाए, अरे बाबा दे दो इसको 10 रुपया दे दो, पिंड छुड़ाते हैं। ऐसे कोई हे महाराज हमारा कल्याण कर दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, भगवान कल्याण तो कर देते हैं पर भीतर का कलेजा थोड़ी देते हैं मंगते को। हम लोग मंगते को हम भीतर का कलेजा नहीं दे सकते, प्रेम नहीं दे सकते। अरे पिंड छुटे दे 10 रुपया दे, पिंड छुटे हमारा क्यों माता खाए। ऐसे ही भगवान से मुक्ति मांगोगे मुक्ति तो दे देंगे, लेकिन भक्ति है भाई वो तो किसी को ही देते हैं। हमारे ऋषभ देव जी महाराज को भगवान की भक्ति मिली हुई, क्योंकि वो साक्षात भगवान के ही रूप थे। उन ऋषभ देव जी महाराज ने चिरकाल से सोए हुए प्राणियों को ज्ञान के डंके से जगा जगा करके स्वरूप का बोध करवाया, ऐसे ऋषभ देव जी को हम प्रणाम करते हैं। उन ऋषभ देव जी के ये भरत जी महाराज राजर्षि भरत बहुत विलक्षण राजा हुए हैं। इनके पंचजनी नाम की विश्वरूप की बेटी, इसका नाम पंचजनी था, उसके साथ विवाह हुआ और उनके संतान हुई पांच। और ये अजनाब वर्ष था वो इसी राजर्षि भरत के कारण से भारतवर्ष कहलाया। उसने बहुत बड़े बड़े यज्ञ करवाए और यज्ञ का जो भी फल वो भगवान को मिले, ऐसा करने से उनके अंतःकरण में बड़ी निर्मलता आई, कोई कामना नहीं रही। बार बार यज्ञ करे, क्यों यज्ञ करे, क्यों यज्ञ करे, इसलिए यज्ञ करे कि भाई भगवान को कर्म फल अर्पित करने में विशेष आनंद आने लगा। तो उनके नेत्रों से झर झर आंसू आते थे, भगवान का वे ध्यान करते थे। ऐसे उच्च स्तरम भक्तिर अनुदिनम एधमान रया, उनका भक्ति का जो वेग था वो बढ़ता ही चला गया। ऐसे करते करते उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया, बच्चों को दे दिया और पुलाश्रम में जाकर वे भगवान की भक्ति करने लगे। ऐसे बैठते थे, बैठे बैठे उनका शरीर पुलकित हो जाता था। देखो भाई, एक बहुत बड़े सत्संग में हम अपने प्रवेश कर रहे हो, भागवत का एक बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है। आप देखो बहुत सावधानी से इस प्रसंग को सुनना है, बहुत अच्छा प्रसंग है ये। जैसे सनत कुमार का प्रसंग जान थी चौथे स्कंद में, ऐसे इसमें भी इस पांचवें स्कंद में ये बहुत विलक्षण सत्संग है। आप लोग देखो, आप लोगों को कहने की जरूरत नहीं है, हम ऐसा कह करके एक अच्छा नहीं करते हैं आपके साथ कि आप शांति से सुनो, शांति से सुन ही रहे हो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान बटाने के लिए बोलते हैं कि आप और विशेषता से ध्यान बटाते हुए सुने। तो वो कभी कभी भगवान की पूजा में ऐसे संलग्न हो जाते, ध्यान में मस्त हो जाते हैं, ध्यान से सुनना, कि वो पूजा करते करते मंत्र भूल जाते हैं, माला उनकी छूट जाती और नेत्रों से आंसू आ रहे हैं, भगवान में प्रेम बढ़ रहा है, सब कुछ भूल करके रे भगवान में मग्न हो जाते। अब देखो मंत्र बोलने उनको तो मंत्र भूल जाए, माला ले रहे करके बैठे हैं तो माला की संख्या भूल जाए, ये क्या है, ये ऊंची भक्ति है, ऊंची भक्ति। जिस समय में भगवान की भक्ति में हम मंत्र और माला सब भूल जाते हो और एक अलौकिक दिव्य आनंद में डूब जाते हो, वो ऊंची भक्ति आती है। भगवत सपरियाम न सस्मारे, भगवान की पूजा भी उनको याद नहीं रहती थी। ऐसे वे मृग चर्म पहने हुए, जटाओं को बढ़ाए हुए हमारे राजर्षि भरत, वे पुलाश्रम के वहां जब बैठे रहते और सूर्य भगवान की उपासना करते तो उनको बड़ा प्रसन्नता का अनुभव होता था। सूर्य भगवान से कहते, हे भगवान, क्या आपका ये दिव्य तेज है, आपके उदित होते ही सब प्राणी अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं, आप अपने चित्त शक्ति से ही संसार में प्रवेश करके सबको जगाते हैं, ये सब अंधेरे में पड़े थे, आपने प्रकाश किया सब उठ गए, और आपका प्रकाश लीन हुआ तो सब सो गए, प्राणियों के साथ आपका तो बहुत गहरा संबंध है। ऐसे वे उपासना में लगे हुए थे, परंतु अब देखो यहां परंतु क्या है, आप लोग इस कथा को सुने में तो है ही, पर इसमें खास बात क्या है, क्या उनके जीवन में बाधा आई थी, वो थोड़ा ध्यान से सुनना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक बार वे नदी के किनारे बैठे हुए थे, भगवान की पूजा करने के पश्चात वे नाम जप कर रहे थे। देखो कोई भी पूजा करो ना, अंत में भगवान का नाम जप जरूर करना चाहिए, भगवान के नाम जप से आपके पूजा की, आपके मंत्र आदि के उच्चारण की, आपके पूजा की रक्षा होती है। नाम जप करना चाहिए, माला लेकर थोड़ी देर जप करना चाहिए, जो भी आपको अच्छा लगे। तो वे नाम जप कर रहे थे, इतने में एक प्यासी हिरणी आई, वो बिचारी पानी पीने लगी, वो गर्भवती थी, सिंह की दहाड़ सुनी, उसने छलांग लगाई और वो बच्चा उसके पेट से निकल करके नदी के प्रवाह में बहने लगा, और वो हिरणी जो उधर कूद करके गुफा में चली गई और मर गई। इधर उस हिरणी के बच्चे को वे नदी के अंदर जाकर उठा लाए, अरे मर जाएगा बेचारा, दया आई, उसको उठा लिया, उठा करके अपने गोद में लेकर के और अपने आश्रम में आए। आश्रम में आने पर उनके मन में बेचारा ये हिरणी का बालक अपने सगे संबंधी साथी माँ से सबसे बिछड़ा हुआ बेचारा, मुझे ही माँ बाप मानता है तो मुझे इसको सब प्रकार से आश्रय देना चाहिए क्योंकि मेरे शरण में आया है। शरण में आए हुए की उपेक्षा करना दोष होता है, ऐसा करके उसको खिलाने की पिलाने की सब व्यवस्था करने लगे और उनको पता ही नहीं चला। और सेनानु स्नेहानुबद्ध हृदय है उनकी, उस मृग के अंदर आसक्ति हो गई। अब ध्यान देना, यहां पहले ही बता दें आपको ये आसक्ति क्यों हो गई हो, क्योंकि उन्होंने भगवान की पूजा भी की, भगवान के पूजा में भगवान के स्मरण में वो गदगद भी होते थे, सब था, लेकिन एक बात की कमी थी कि उन्होंने कभी सत्संग नहीं किया था। पुलहाश्रम में आए परंतु वहां जितने भी संत लोग होते थे उनके बीच में बैठ करके हमारे राजर्षि भरत ने सत्संग नहीं किया, भगवान की आराधना में तो लगे। अब देखो बिना सत्संग के हम जो भगवान की भक्ति करते हैं वो हमारी मर्जी का साधन होता है, वो भक्ति व्यर्थ नहीं जाती है पर एक उसमें कई कमी रह जाती है। और जहां संत महात्माओं के सत्संग करके हम भक्ति करते हैं वहां हमको मार्ग पहले से मिला रहता है। तो हमारे जड़ ये राजर्षि भरत ने क्या क्या सत्संग नहीं किया था इसलिए आसक्ति हो गई। अकेले में जो सोच लिया वो ठीक था, ऐसी आसक्ति हुई कि कभी कभी वो भगवान की पूजा में बैठते 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 अकस्मात उस मृग की याद आती और अपने झोपड़ी के छोटे से दरवाजे से देखते कि वो मृग बालक यही है कि नहीं, कहीं बाहर तो नहीं चला गया। कभी कभी वो फुदकता फुदकता कुटिया से बाहर चला जाता तो बड़ा उनके मन में क्षोभ पैदा होता, अरे ये क्या हुआ, वो वापिस आएगा कि नहीं, अरे जंगल में तो भेड़िया है सिंह है कोई उसको खा जाएगा, अरे बिचारी उस मृगी का जिसकी इसकी माँ मर गई वो बच्चा बेचारा मेरे पर विश्वास किया हुआ अब बताओ कहाँ गया होगा। असंतोषम स्वानाम अपनुदन, वो तो मृग ऐसा है कि वो हमारे शोक को दूर करने वाला था, वो मेरे पास में आकर खुजलाता था छोटे छोटे सिंह और मेरे पीठ में खुजलाता, मुझे कितना अच्छा लगता। कभी कभी मैं झूठे समाधि में बैठता तो वो मेरे गोद में बैठता था, मेरे मुंह की तरफ ही मुंह देखने लगता, कितना अच्छा लगता था। अब वो मिलेगा कहाँ मिलेगा, अरे पृथ्वी तेरे चरणों से जो है मेरे मृग के चरणों से तू तो बड़ी हरी भरी दिखाई देती है, देखो जहाँ खूब ये घास होता है वहां पर हिरण रहता ही है, तूने जरूर उसको देखा होगा। अरे नहीं नहीं, इस उड़ूपति ने चंद्रमा ने उसको देखा है, देखा ही नहीं है, चंद्रमा ने तो उसको अपने अंदर रख भी लिया है, चंद्रमा के अंदर जो ये कालिमा दिखती है ये क्या है, अरे ये मेरा मृग है, अरे चंद्रमा तुम हमारे मृग को कहाँ ले गए कहाँ ले गए। अरे चंद्रमा तुम तो वियोगियों के हृदय को संतप्त करने वाले हो, तुम्हारी किरणें तो ठंडी है लेकिन हृदय में दाह पैदा करती है। ऐसे ऐसे अघटित मनोरथों में वो फंस गए। धीरे 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 वे भगवान की आराधना से च्युत हो गए। अब यहां पर एक बात दी है कि योगारम्भण तो विभ्रंशित है, स्वारब्ध कर्मणा योगारम्भण तो विभ्रंशित है। प्रारब्ध से वो ध्यान देना, शब्दों का अन्वय नहीं करते हैं तब अर्थ का अनर्थ होता है और शब्दों का ठीक अन्वय किया जाता है तो वहां अर्थ का अर्थ निकलता है। गलत अन्वय करने से क्या अर्थ निकलता है कि उनको प्रारब्ध कर्म से क्या होना पड़ा कि भ्रष्ट होना पड़ा, उस मृग में आसक्ति हो गई वो उनके प्रारब्ध का फल था ऐसा लगता है इसमें, पर वो प्रारब्ध से आसक्त नहीं हुए थे। प्रारब्ध से वस्तु मिलेगी व्यक्ति मिलेगा, प्रारब्ध से उनको मृग मिला ये तो प्रारब्ध की बात थी, लेकिन योगारम्भणतः विभ्रंशित ये बात नहीं हो सकती। वो योग से भ्रष्ट हो गए, भक्ति से भ्रष्ट हो गए, ये प्रारब्ध का कर्म नहीं है, ये प्रारब्ध का फल नहीं है। वो तो आसंग है, साफ लिखा आगे, वो आसक्त हो गए थे, इतने में मृत्यु आ गई। जैसे बाप अपने पास में खड़े हुए बेटे को देखकर चिंतित होता है, ऐसे अपने पास में खड़े हुए उस मृग को देख करके वो चिंतित हो गए। यहाँ देखो ऐसा ऐसा लिखा है, सुखदेव जी ने ऐसा कहा है कि दो तरह का अन्वय निकलता है इसमें, कि वो मर गए और उनके साथ में वो भी मर गया, ऐसा भी इसमें लगता है, तेन सह मृग शरीरम अभाप है। लेकिन वास्तव में यहाँ बताना क्या चाहते हैं, यहाँ मृग की मृत्यु बताना नहीं चाहते हैं, यहाँ अभिप्राय है कि वो राजर्षि भरत मरे तो उनके अंदर आसक्ति चली गई, और आसक्ति चले जाने से अगले जन्म में वो मृग बने। मन में विचार आया कि अरे मैं तो पहले कितना बड़ा राजा, सबको छोड़ छाड़ करके एक मृग में आसक्त हो गया, आज मुझे मृग बनना पड़ा, बड़ा वैराग्य हुआ। और वे कालंजर से वापिस पुलस्त्य पुल आश्रम में ही आ गए, वहां पहली जगह ही मृग बने हुए आ गए, और वहां वे बहुत सावधानी से रहते थे, मृग के झुंड में नहीं बैठते थे, कहीं आसक्ति हो जाएगी, सूखे सूखे पत्ते खाते थे, ऐसे करके वहां रहे और उनका शरीर शांत हो गया। और उसके बाद वे आगे अंगिरा गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिए। उस ब्राह्मण के दो पत्नियां थी, एक पत्नी से 9 बेटा पहले ही हो गए थे, और दूसरी पत्नी से एक कन्या और एक बेटा, जो तो बेटा हुआ वो ये जड़ भरत जी, इनका नाम हुआ जड़ भरत जी, ब्राह्मण बन गए। बड़े सावधान रहे कि अरे मैं पहले राजर्षि था फिर मृग बना, अरे राम राम मैं कहीं फंस न जाऊं, ऐसे मन में विचार किए किए भाई वो वहां से अपने पिता के पास रहे। और पिताजी ने उसको, पिताजी ने विचार किया कि इसको मैं बहुत बड़ा पंडित बनाऊंगा, बहुत बड़ा विद्वान बनाऊंगा, परंतु उनके मन में ही नहीं आई है। उनके मन में तो ये रही कि भाई सा विद्या सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वही है जिससे मुक्ति होती हो, ये कोई विद्या थोड़ा ही है। ऐसा विचार करके उन्होंने गायत्री मंत्र को भी याद नहीं किया, त्रिपदा गायत्री, 3 पद होते हैं उसमें, त्रिपदा गायत्री मंत्र को भी बहुत लंबे समय तक याद नहीं किया, जो कि 5 मिनट से कम में भी याद हो सकता है। ओम भूर्भुवस्तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये इस प्रकार से त्रिपदा गायत्री मंत्र याद नहीं कर सके, तो याद करना ही नहीं था। पिताजी ने देखा कि बेटे को विद्वान बनाऊं, पर ये तो इतना भी याद नहीं किया, तो भाई फिर उनके मन से निराशा हो गई, और उधर उनके पिताजी का शरीर भी चला गया, माँ भी पिताजी के साथ चली गई, अब खुले हो गए। अब बेटों, अब उनके भाइयों ने कहा कि देख भाई तू खाता तो खूब है लेकिन काम कुछ करता नहीं है, पढ़ा लिखा कुछ है नहीं, तेरा खर्चा हमसे जो है वहन होगा नहीं, इसलिए भाई तू तुम्हारे और हम हमारे, अच्छी बात है, घर से निकल गए। अपने अंदर तो खूब ज्ञान है, बाहर से उस ज्ञान का खूब गोपन किया, बाहर से उस ज्ञान को खूब छिपाए रखे, मस्त मलंग रहते थे वो, मस्त जहां कहीं जाते जो कुछ मिल जाता उससे अपना निर्वाह कर लेते, कोई कैसा भी अन्न देता उसको भगवान के भोग लगा करके लेते, तो फिर उसमें कोई उनको दोष नहीं दिखता था। मन में सोचते चलो ये भगवान का प्रसाद है, अरे जला हुआ खिचड़ा है, खिचड़े की खुरचन है, कोई बात नहीं भगवान का प्रसाद है, बर्तन में लग जाता था खिचड़ा, उसको कुचर कुचर करके जो पशुओं को डाला जाए वो उनको दे दिया जाता था, खा लेते बड़े प्रेम से, शरीर बड़ा रिष्ट पुष्ट उनका, क्यों, इसलिए था कि भाई वे इंद्रियों के स्वाद के लिए तो भोजन करते नहीं थे, वो तो प्राणों के भूख को मिटाने के लिए करते थे, तो बड़े मस्त थे वो। उनके भाइयों ने देखा कि अरे लोगों के खेतों में काम करता है तो हमारे खेत में काम कराओ, रोटी तो हमारे लिए कोई महंगी नहीं है। तो अपने भाइयों ने कहा कि भाई तुम हमारे खेत के अंदर क्यारियां बनाया करो, उसमें पानी दे दिया करो, रक्षा करो हमारे खेत की। ठीक है साहब, वो रक्षा में लगे हुए थे। एक दिन की बात है, एक चोरों का सरदार था, उसने भद्रकाली के सामने प्रतिज्ञा की कि महाराज मेरे कोई लड़का हो जाए तो आपको एक पुरुष बलि देंगे। तो उसके लड़का हो गया। अब देखो ये प्रसंग, इसका अर्थ क्या हुआ कि देवी देवताओं के सामने आप लोग मनोती करते हो, वो शास्त्र विरुद्ध मनोती है कि शास्त्र सम्मत मनोती है? ये शास्त्र विरुद्ध मनोतियां नहीं मनानी चाहिए, उससे नुकसान होता है। ये शास्त्र विरुद्ध, हम पुरुष पुरुष की बलि देंगे, शास्त्र विरुद्ध ही बात हुई। मनोती करो तो भाई हाँ, भगवान की प्राप्ति के लिए करो, संसार से ऊपर उठने की मनोती करो। बेटा मिल जाए, बेटा हो जाए, क्या हो जाएगा? थोड़े दिन बाद में बेटे का तुम्हारा वियोगी होगा। अब देखो ये सत्संग का क्षेत्र है, उसमें ऐसी बात दी है तो ये एक चीज को दो तरीके से समझाया जाता है, लाभ और हानि दोनों पक्ष से। तो भाई उसने लड़का प्राप्त कर लिया, उसके लड़का हो गया, तो वहां पर एक आदमी को बलि के लिए तैयार किया, वो आदमी तो जैसे तैसे भग गया। अब क्या करें? तो उसके सेवक गए इधर उधर घूमने के लिए, तो जंगल के अंदर ये जड़ भरत जी महाराज मिल गए। जड़ भरत जी को उठाया उन्होंने, उठा करके जड़ भरत जी को ले गए देवी के सामने। खूब जड़ भरत जी को नहलाया धुलाया, रेशम के कपड़े पहनाए और उनके टीका वगैरह किया और सजाया धजाया, गए बिचारे देवी के सामने, उनको रखा। अब सब लोग खड़े हैं वहां पर, वो चोरों का सरदार वीर और वीर सब लोग हौ साहब देवी का खड़ा उत्सव करने लगे और कहा हे पुरुष, देवी के सामने नीचा मस्तक करो, अब तुम्हारा वध होने वाला है। जब राजपुरोहित ने ये बात कही, उन्होंने सिर नीचा कर लिया और हाथ जोड़ खड़े हो गए बेचारे जड़ भरत जी महाराज। उसने अपनी तलवार लेकर, तलवार की धार देखकर, जो ही वो उस पर यू प्रहार करने ही वाले थे, त्यों ही वो देवी जो मन मूर्ति के अंदर थी सहसा प्रकट हो गई। साक्षात प्रकट होकर के उसने आते ही पहले उसकी तलवार पकड़ ली, तलवार अपने हाथ में ले ली और जितने वहां थे सबका गला काट दिया उन्होंने। वो जो चोरों का सरदार था और लोग थे सबका गला काटा, इतनी फुर्ती से काटा, किसी की गर्दन नीचे नहीं गिरने दी। और यूं यूं काटते काटते सब गेंद के साथ वो खेलती रहे, ऐसा जीभ निकाली रही, वो बेचारे जड़ भरत जी यूं ही खड़े हैं, ऐसे खड़े रहे। तो देवी को विचार आया कि अरे ये साक्षात भगवान के स्वरूप है ब्राह्मण, इनके गले में जनेऊ है, इन लोगों ने इतना भी विचार नहीं किया कि इसकी हम बलि दे रहे हैं। अरे किसी बलि तो किसी भी जीव की मत दे हो, परंतु इसकी बलि दे रहे हो, ब्राह्मण की बलि दे रहे हो। परंतु हमारे जड़ भरत जी महाराज के मन में लेश मात्र भी मृत्यु का दुख नहीं हुआ, भय नहीं हुआ, मृत्यु का भय नहीं हुआ, मारे मर जाएंगे। और जब वो बच गए तो कोई मन में खुशी नहीं हुई, सीधे सीधे रवाना हो गए, जैसे आए थे वैसे ही रवाना हो गए, भाव में कोई फर्क नहीं रहा। अब चलिए ऐसे करते करते एक बार की बात है, अथे माने एक बार, हमने आपको पहले ही कह दिया भाई अपन बहुत पीछे हैं कथा दृष्टि से, परंतु सत्संग दृष्टि से कथा, एक तो भाई कथा होती है कथा प्रधान, एक होती है और कुछ प्रधान। अपने भाई जो सत्संग होता है ना, वो भागवत की चीजें सत्संग के द्वारा अंदर जाती है, वो असर करती है। भागवत में सत्संग ही तो है और क्या है, जैसे कुनैन की दवा है वो बताशे के साथ ली जाए तो भाई वो बताशे के साथ ले लेंगे, केवल कुनैन फाकेंगे थोड़ी कड़वी लगेगी। तो ये बहुत बढ़िया प्रसंग है, देखो सत्संग की बड़ी अच्छी अच्छी बातें आएंगी। तो एक सिंधु सोवेर देश के राजा थे रहुगण, वो सत्संग करने के लिए जा रहे थे, वो जा रहे थे कपिल भगवान के पास, और उनकी पालकी के अंदर एक आदमी की जरूरत थी, वो चलते चलते जंगल में गए तो वहां उनको एक मोटा दादा आदमी बड़ा मस्त मलंग दाढ़ी बड़ी हुई जटा बड़ी हुई और मस्ती से यूं चल रहे थे। हस्ती की चाल चलो मेरे मनवा जगत को करी को भुसबा दे तू तो राम सुमिर जग हसबा दे। संतों की चाल ऐसी होती हाथी की चाल से मस्ती की चाल से चल रहे थे। राजा ने देखा अरे वो मोटा ताजा आदमी देखो बड़ा मस्त चल रहा है अपने को तो एक आदमी की कमी का अनुभव हो रहा है हमें तो कितने आदमियों की कमी दूर कर देगा बुलाओ उसको बुलाओ। बुलाया साहब और ना तुम हमारी पालकी में लग जाओ हमारे यहाँ एक आदमी की कमी है अच्छी बात है महाराज पालकी में लग गए। अब पालकी में लगे तो भाई यू देख करके चले वो एक बाण जितनी दृष्टि रख करके चले बीच में कहीं कीड़े मकोड़े हो कोई बिल आए तो बचा के चलना चाहिए ऐसी नहीं थोड़ी चलना चाहिए नीचे देख के चले तो वो बेचारे नीचे देख के चलते कीड़े मकोड़े को बचा के चलते तो बचा के चलते तो पालकी वो हिलती तो वो राजा भी हिलता। राजा ने कहा अरे भाई क्या करते हो सही ढंग से चलाओ ना अभी तक तो सही चल रहे थे क्या हो गया कि महाराज हम तो सही चल रहे हैं टेढ़ा मेढ़ा तो ये अभी मोटा ताजा आदमी ये टेढ़ा मेढ़ा चलता है। रहुगण को घमंड आया मैं राजा हूँ और ये मेरी प्रजा है मेरे नौकर है इसको सही ढंग से ये पालकी उठाने नहीं आती क्या बात है फटकारने चालू की। कौन हो तुम क्या ऐसी बात करते हो अभी अभी तुम लगे हो और इतनी बड़ी बात करते हो मुझे से कोई बहुत देर से तुम लगे हुए हो क्यों पालकी को हिलाते हो ठीक ढंग से चलो। वो बेचारा दुबला पतला आदमी यहाँ लगा हुआ है ऐसे करके बड़े अभिमान में बोला वो परंतु उन्होंने अपनी चाल नहीं छोड़ी। संत होते हैं ना वो कैसे होते हैं कि बज्रादपि कठोराणी और मृदुनी कुसुमादपि अपने धर्म में तो वो वज्र के समान कठोर होते हैं दूसरों के लिए एकदम नरम होते हैं नरम। तो अपने धर्म में कठोर थे हमारे जड़ भरत जी महाराज चलेंगे तो हम ऐसे ही कीड़ी मकोड़े को मार करके तो हम नहीं चल सकते वो ऐसे ही चलने लगे तो अब राजा को बहुत क्रोध आया क्या बात है भाई तू जीते भी मरेगा क्या राजा के शासन का उल्लंघन करता है तुझे कोई दंड देना पड़ेगा बस ये अंतिम चेतावनी है तुम हमारी बात का आदर करोगे तो ठीक है नहीं तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। ऐसे ऐसे असंबद्ध बात बोलने लगा तब वो हमारे जड़ भरत जी महाराज मुस्कुराए मुस्कुराते हुए कहने लगे त्वयोदितं व्यक्तम अविप्रलब्धं भरतो समेस्याद यदि वीर भार। अरे ओ राजन तुमने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक मालूम देती है क्योंकि यदि भार नाम की कोई चीज है सच्ची चीज है तो उठाना ही पड़ेगा मार्ग यदि सच्चा है तो उस पर चलना ही पड़ेगा परंतु तुमने एक दो बात कही उस बात के ऊपर जरा गौर तो करो। तुमने कहा कि शरीर मोटा ताजा है भूखा प्यासा है खाता पीता नहीं है या दुबला पतला है ऐसी जो तुम बात करते हो जरा इसमें सोचो कि तुम किसके लिए क्या बोलते हो। ये स्थूलता कृशता निरोगता और बीमारी भूख प्यास कलह शोक मोह क्रोध ये किसको होते हैं राजन ये शरीर को होते हैं और जो शरीरी है उसको ये नहीं होते इसका हमारे साथ कोई संबंध नहीं है शरीर तक ही संबंध है। तुम कहते हो कि तू जीते हुए मरना चाहता है हम कहते हैं सारी सृष्टि ही जीती हुई मरती है हर क्षण पैदा होती है हर क्षण मरती है हर क्षण पैदा होती है हर क्षण मरती है तेरा और हमारा मिलना हुआ तो जितने क्षण से हमारा मिलना हुआ उतने क्षण पैदा हुए और उतने क्षण मर गए और अब कई क्षण पैदा हो रहे कई क्षण मर जाएंगे ये तो जीना मरना सृष्टि का एक नियम राजन नियम है। परंतु ये सोचो क्या तुम राजा और हम प्रजा ये संबंध नित्य है क्या? ये संबंध तो हमें नित्य नहीं मालूम देता, क्योंकि तुम राजा अपने बाप के मरने के बाद बने हो, क्योंकि तुम एक दिन मर जाओगे तो तुम्हारे बाद तुम्हारे बेटा राजा होंगे, तुम तो राजा नहीं कहलाओगे ना। राजा है, प्रजा है, पालकी है, उठाना है, चलना है, फिरना है, मोटापना है, ताजा, ये सब बुद्धि का व्यवहार है और कुछ नहीं है। ये व्यवहार एक अलग चीज है, व्यवहार कोई सत्य चीज थोड़ा ही है। राजा प्रजा का व्यवहार भी सत्य नहीं होता, इसलिए तुम हमारी क्या चिकित्सा करोगे, क्या हमको दंड दोगे, पिसे हुए को क्या पीसोगे, हमारे तक तो ये तुम्हारा दंड पहुंचता नहीं, हमारे तक मृत्यु नहीं पहुंचती है, हमारे तक सृष्टि नहीं पहुंचती है, तुम्हारा दंड कहां पहुंचेगा भाई? ऐसा कहकर वो चुप हो गए। ध्यान से सुनना, एक महात्मा की सच्ची हृदय की बात जब निकली और वो रहुगण सत्संग के ही सन्मुख होकर जा रहा था ना, वो बात एकदम उसके हृदय में बैठ गई। अरे ये कोई बड़े विलक्षण महात्मा है, ये तो तत्व को जानने वाले हैं। उसी समय में राजा पणे का अभिमान दूर हो गया। ये अभिमान दूर होता नहीं जल्दी, पर कोई विलक्षण महापुरुष होते हैं उनके पास में जाए सत्संग करे तो अभिमान दूर होता है। तत्काल वो पालकी से नीचे कूदे, चरण पकड़ लिए और कहने लगा कि महाराज कस्त्वां निगूढ़श्चरसे द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कतमो वधूत कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात् क्षेमायनश्चेदसि नोत शुक्ल। कौन हो महाराज? आप पहचान नहीं सके हम तो आपको, कहीं आप हमारे शुक्ल माने कपिल भगवान तो नहीं हो? आपके शरीर पर जनेऊ है। महाराज मैंने तो आपको समझा ही नहीं, कैसा मैं राजा पड़े के घमंड में रहा, मैं ये नहीं सोच सका कि एक जनेऊधारी ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण को मैं पालकी में कैसे लगा रहा हूं। आप तो केवल ब्राह्मण ही नहीं हो, जनेऊ धारण कर लिया इतने में ही आपका ब्राह्मणत्व तो नहीं, आप तो एक अवधूत कोटि के महापुरुष हो, पकड़ो एकदम। महाराज मैं आपसे इस विषय में कुछ पूछना चाहता हूं, एक तो मेरे से अपराध हो गया, आप मुझे क्षमा करना। एक ब्राह्मण का अपराध से मैं जितना डरता हूं उतना मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, शंकर के त्रिशूल से नहीं डरता, अग्नि और सोम से भी नहीं डरता, एक ब्राह्मण का अपमान हो जाए इससे डरता हूं। आपके वचनों ने मेरे हृदय के अज्ञान को, अज्ञान पटल को भेद दिया है, आपके वचनों का मुझ पर बहुत असर पड़ा है। मैं महाराज यही बात पूछने के लिए जा रहा था कि संसार में किसकी शरण लेनी चाहिए, कपिल भगवान से यही पूछने जा रहा था। मुझे ज्ञान से मतलब है, मुझे वक्ता से मतलब थोड़ा ही है। ये कितनी विचित्र बात है, मुझे वक्ता से मतलब नहीं, मुझे वक्तव्य से मतलब है। वक्ता कौन है, मुझे क्या मतलब, वक्तव्य क्या है। मैं जा रहा था कपिल भगवान के पास, परंतु आपके पास ज्ञान है, आपके पास कोई कम ज्ञान नहीं है, आप ही मेरी शंकाओं का समाधान कर दीजिए। आप कहते हो कि आत्मा अलग है, इसका व्यवहार जगत से कोई संबंध नहीं है, तो महाराज मैं तो घर गृहस्थ में फंसा हुआ, ऐसी गहरी बात क्या समझूं। मैं तो व्यवहार को बड़ा सच्चा मानता हूं, भूख लगती है रोटी मिलती है, और प्यास लगती है जल मिलता है, तो हमको भूख प्यास से निवृत्ति मिलती है, सुख मिलता है, तो व्यवहार तो सच्चा ही हुआ। ऐसे ही आत्मा इंद्रियां मन बुद्धि ये परस्पर में मिले हुए तो है, जैसे चूल्हे पर हम पात्र रखते हैं तो चूल्हे की आग से पात्र गर्म होता है, पात्र के गर्म होने से पानी गर्म होता है, पानी के गर्म होने से चावल गर्म होता है। ऐसे ही शरीर को कष्ट दिया जाता है तो वो आत्मा को कष्ट होता है, क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों एक एक हुए हुए रहते हैं। और दूसरी बात, आपने कहा कि राजा का धर्म है वो नित्य नहीं है, तो महाराज ये बात भी मेरे समझ में नहीं आई क्योंकि राज धर्म का पालन करना तो भगवान के धर्म का पालन करना है। भगवान ने भी कहा कि राजा को ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो मैं महाराज आपकी बात नहीं समझ सका हूं और मैं एक राजा के अभिमान के कारण से नहीं समझ सका, ये मेरी त्रुटि है। देखो देखो कैसा विलक्षण सत्संग है। हो सत्संग करने वाले रहुगण ने अपनी गलती साफ कह दी कि मेरे राजा पड़े का अभिमान था। नरदेवाभिमान मदेन, इस राजत्व के अभिमान के मद से मैंने आपका अपमान कर दिया, आप मुझे क्षमा करेंगे और ये बताएंगे कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग कैसे हैं, सुख और दुख का आत्मा से संबंध नहीं होता, ये आप हमको जो है समझाएंगे। तो हमारे जड़ भरत जी महाराज कहने लगे, अको विदह को विदवाद वादान वदस्यथो नाति विदां वरिष्ठ न सूरयो ही व्यवहार में तत्वावमर्शे न सहमनंती। देखो भाई अब यहां पर फटकार लगाते हैं पहले ही पहले। अब फटकार लगाई हमारे महाराज जड़ भरत जी ने, पहले तो कितने जो है शांति से बात की, अब फटकार क्यों लगाई? ध्यान देना, जब साधक गुरु की शरण में जाता है, संत की शरण में जाता है, हृदय से उनका शरणापन्न होता है, तब उस साधक के सारे दोष होते हैं, कमियां होती है, वो कमी गुरु अपनी कमी मानता है और जैसे उसको अपनी कमी नहीं सुहाती है ऐसे ही वो उनकी कमी को नहीं सुहाती, वो कमी वो सहन नहीं करता, इसलिए वो उसको जो है फटकारते हैं। ये फटकार किसके लिए है? ये फटकार इस बात का द्योतन करने वाली है कि जड़ भरत जी महाराज ने रहुगण को अपना शरणागत स्वीकार कर लिया। शरणागति की स्वीकृति का लक्षण है उसको फटकारना। जैसे माँ है अपने बेटे को फटकार सकती है, सबको नहीं कह सकती। पिता अपने बेटे को दंड दे सकता है, सबको नहीं दे सकता, क्योंकि वो उसके ऊपर वो उसने स्वीकार किया कि अयम में पुत्र है। ऐसे ही गुरुजन है, संतजन है, जब स्वीकार करते हैं तब फटकार लगाते हैं, नहीं तो जब स्वीकार नहीं किया तो फटकार नहीं लगाई। और स्वीकार भी अपनी मर्जी से नहीं किया, स्वीकार रहुगण ने अपने को उनको दे दिया, रहुगण ने दे दिया तो उन्होंने रहुगण को ले लिया। ऐसा नहीं गुरु जी आए नारियल चढ़ा दिया, शिष्य बना दिया और जाओ कानिया मानिया कुर तू चेला में गुर, 100 रुपया धर अब जी चाहे मर, ऐसे गुरु नहीं थे वो। ये गुरु बड़े विलक्षण थे, इन गुरु जी ने उस शिष्य को स्वीकार किया है और फटकार लगाई कि अकोविद यार कोविद वादान वदसी, मूर्ख होकर के पंडिताई की बातें करता है, ऐसी बातें ज्ञानियों के सामने नहीं चलती, क्योंकि ज्ञानी लोग व्यवहार को कभी सत्य नहीं मानते। तुम तो व्यवहार की बात करते हो राजन, ज्ञानी लोग तो वेद के सकाम कर्मों को भी आदर नहीं देते। जिस प्रकार से स्वप्न के सुख होते हैं, स्वप्न का दृश्य होता है वो हेय होता है, त्याज्य होता है, उसका अपने आप त्याग होता है, ऐसे संसार के सुखों को जब तक स्वप्न के समान मिथ्या नहीं मान लोगे तब तक तुमको संतों की वाणी समझ में आ नहीं सकती है। कहां होता है सुख दुख? ये मन के साथ होता है, मन के साथ ये आत्मा मिलता है। मन के अंदर रजोगुणी तमोगुणी सत्वगुणी और मिश्रित कई प्रकार के संस्कार भरे पड़े हैं, निरंकुशम कुशलम चेतरम वा, और फिर ये वासना से जुड़ा हुआ मन संसार चक्रकूट है, संसार के चक्रकूट के साथ संसार के चक्र में फंसा हुआ आत्मा भी इनके साथ में चक्र काटता रहता है, ये घूमता मन है संसार में, आत्मा चिपकने के कारण से घूमता है। देखो ताड़ी के ऊपर एक लाल रंग का चिन्ह कर दो फिर वो लाल रंग पंख के साथ यूं घूमता है, लाल रंग घूमता थोड़ा ही है, उसके साथ चिपका हुआ है तो ताड़ी घूमती है तो घूमता हुआ दिखता है। ऐसे ही ये सुख और दुख और ये चीजें ये मन बुद्धि तक ही है भाई, तावा नयम व्यवहार है सदावी, ये आत्मा इनके साथ मिलता है तभी इसको व्यवहार सत्य मालूम देता है। आत्मा इनके साथ न मिले तो न इसको सुख से मतलब है न दुख से मतलब है, क्योंकि आत्मा इनका साक्षी है। ये सबसे बड़ी जीत का कारण यही है आत्मा का, कि सबका साक्षी है, सब पे सबके नष्ट हो जाने पर भी कायम रहने वाला है। आविर्हिताश्चापि तिरोहिताश्च, ये मन की वृत्तियां, ये संसार की परिस्थितियां आती है और जाती है, आती है और जाती है, और शुद्धो विचष्टे, ये आत्मा ज्यों का त्यों शुद्ध रहता है। परंतु इस आत्मा में जब तक विचार हम नहीं करते, इस विषय का ज्ञान नहीं करते ना, तब तक हम छह शत्रुओं से घिरे हुए रहते हैं। इसलिए इस मन की बेपरवाही मत करना, इस मन को जीतना हो तो देखो राजन, भगवान के चरणों का आश्रय लो, गुरु महाराज के चरणों का आश्रय लो, और तब जाकर के तुम अपने अज्ञान को दूर कर पाओगे। रघुगण ने कहा वाह महाराज, अब हमें पता चला कि मन अलग है, इंद्रियां शरीर ये सब अलग है और आत्मा अलग है। महाराज हम तो सब मिला हुआ सही देख रहे थे, इस अलगाव का आज हमको ज्ञान हुआ। इस शरीर के साथ अहम पना होने से हम लोग इस बात को नहीं समझ पाए थे महाराज। अब आपका जो ये आध्यात्मिक ज्ञान है, इस आध्यात्मिक ज्ञान को मुझे और खुलासा करके सुनाओ कि व्यवहार क्यों झूठा है। अब देखो व्यवहार कैसे झूठा है उसको और संक्षेप में बताते हैं, ये तो विस्तार से बताते हैं, आपको हम संक्षेप में बता देते हैं, क्योंकि अब संक्षेप में बताने का ही समय है। देखो कथा का, ज्ञान का, सत्संग का आनंद कब तक है, जब तक रुचि पूर्वक श्रवण होता है। और समय हो गया, आप भी बार बार घड़ी देखें, मैं भी घड़ी देखूं, तो एक तरह से उस रुचि में कुछ शिथिलता आती है, और शिथिलता आने के बाद फिर कहने सुनने में कोई विशेष स्वारस्य नहीं रहता। जब तक तार बना रहता है ना, तब तक कहने सुनने का आनंद रहता है। तो कहा कि महाराज मुझे और युक्ति से समझाओ कि व्यवहार झूठा कैसे है, क्योंकि हमारा व्यवहार ही सुधरता है। परमार्थ तो सुधरा हुआ है ही सबका, परमार्थ सबका सुधरा हुआ है, केवल व्यवहार सुधारना है। तो वो बोलने लगे जड़ भरत जी महाराज कि देखो राजन, तुम सोचो कि ये शरीर है ना, ये क्या है, ये पैर है, टकने है, पिंडली है, जांगे है, कमर है, छाती है, हाथ है, शरीर है, ये सब काय से बना है भाई, ये पृथ्वी से बना हुआ है। पिता ने अन्न खाया, उससे जो अंश बना उससे माता में गया और उससे शरीर बना है, तो ये पार्थिव चीज है ना। और ये तुम्हारे जिस तुम इसमें बैठे हुए हो, इसमें रथ में, पालकी में, जिस पालकी में बैठे हुए हो, ये पालकी भी तो भाई लकड़ी की बनी हुई है, और ये लकड़ी वृक्ष से बनती है, और वृक्ष है वो पृथ्वी से निकलता है। अब बताओ कि तुम इसमें राजा बने हुए, हम लोग उठाने वाले, और जिस पालकी में तुम बैठे हो वो चीज, ये सब तीनों के तीनों पृथ्वी के नहीं है, तो बताओ क्या है। नाम अलग अलग रख दिया कि तुम तो राजा हो गए, हम प्रजा हो गए, ये पालकी हो गई। एक ही पृथ्वी से बने हुई चीजों में नाम अलग अलग रख दिया, वास्तव में इनके साथ तो हमारी एकता है, तुम्हें राजा पड़ेगा घमंड कर लिया, और हम लोगों को तुम सताने लग गए। तो बताओ व्यवहार ही तो है, ये व्यवहार सच्चा थोड़े ही, झूठा ही तो है, क्योंकि पृथ्वी सच्ची नहीं होती, हमारा शरीर सच्चा नहीं, पालकी सच्ची नहीं, और भाई उसके बाद ये भी सच्ची नहीं, पृथ्वी भी सच्ची नहीं। यहाँ पर एक परमाणुवाद की बात आती है, एवं निरुक्तम क्षिति शब्द वृत्तम असन्निधानात परमाणवो, ये पृथ्वी के जो परमाणु है वो भी सत्य नहीं, और जितने भी और महाभूत हैं उनके परमाणु भी सत्य नहीं है। अविद्या मनसा कल्पिता, कई परमाणु इकट्ठे हो गए तो हमने नाम इसका पृथ्वी रख दिया, है तो वास्तव में परमाणु ही। जितने हम कार्य जगत के सूक्ष्म अंश पर विचार करेंगे उतना ही कार्य जगत का प्रभाव हमारे मन से उतरेगा, ये खास बात है। देखो मकान का सामान पड़ा रहता है ना, मकान यू रंग टिप टॉप किया हुआ तो बहुत अच्छा लगता है, पर केवल ईंट पड़ी हो और वो जो है सीमेंट पड़ी हो, लोहा पड़ा हो, गट्टी पड़ी हुई हो, तो इतना उसमें आकर्षण नहीं होता। उसके अलावा कुछ है भी नहीं मकान में, उसके अलावा कुछ नहीं है। पर जितने ऐसे ही हमको ये शरीर है ना जैसा दिखता है, इसमें तो हमारा प्रेम होता है, पर इसके कारण तत्वों पर जाएंगे, गहराई से जाएंगे, तो अपने आप देहाध्यास छूटता है, ममता छूटती है, कामनाएं छूटती है। द्रव्य स्वभाव आशय काल कर्म नामना जया वे ही कृतम द्वितीयम। यही द्रव्य स्वभाव आशय काल कर्म ये सब माया से मिलकर के संसार को बनाते हैं और एक परब्रह्म परमात्मा में भेद करते हैं। वास्तव में परमात्मा एक के एक है, वो प्रत्यक है। प्रत्यक प्रत्यक माने सबके अंदर व्यापक रूप से विराजमान है। उनका नाम वासुदेव है। वासुदेव बताया था, वसुदेव माने चित्त, उसमें रहने वाले वासुदेव। उस परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान आहा रहुगण बहुत सुंदर बताते हैं। रहु गणैता तपसा न याति न तेज्यया निर्वपणा गृहद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् विना महत्पाद रजो विषेकम्। महापुरुषों के चरणों को जब तक नहीं धोगे तब तक भाई उनके चरणों में लोटपोट नहीं हो जाओगे, तब तक इस ज्ञान की उपलब्धि नहीं होगी। कहने लगे महाराज, महापुरुषों के चरणों में लोटपोट होने का अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि उनके वचनों को नम्रता पूर्वक पालना। अब बताओ शब्द में भावार्थ तो ये होता है, हम लोग केवल वो मिट्टी लगा लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, उससे नहीं होता। उनके वचनों में शरणागत होना चाहिए, क्योंकि महापुरुषों के वहां पर एक भगवान की चर्चा चलती है, विषयों की चर्चा वहां पर नहीं चलती, उससे बुद्धि हमारी शुद्ध होती है। देखो मैं अपनी बात बताऊं, पहले मैं राजर्षि भरत था। अरे महाराज आप राजर्षि भरत थे? हाँ हाँ सुनो तो सही। महाराज आप राजर्षि भरत थे, हमने सुना कि उन्होंने तो मृग में, हाँ वो मैं ही हूं, मृग में आसक्ति मेरी हुई थी, मैं भगवान की आराधना से च्युत हो गया था और मृग में आसक्ति होने से मेरा कल्याण नहीं हुआ, भगवान की स्मृति का, भगवान की पूजा का प्रभाव मेरे आज भी है, लेकिन भाई वहां पर मैं महापुरुषों का संग नहीं कर सका। तथा हम जन संगाद असंग है, जन संगाद, जन बोलते हैं भक्तजन, उनके संग से मैं असंग रहा, मुझे भक्तों का संग नहीं मिला, मैंने संतों का संग नहीं किया, संत संग से असंग रहा। इस कारण से भाई मैं जो है अब क्या बताऊं, मैं उससे च्युत हो गया, आराधना से च्युत हो गया। इसलिए अब तुम ऐसा करो, लोगों से तो असंग रहो और ज्ञान रूपी तलवार ले हो और अपने मुंह का नाश करो और देखो ये संसार एक जंगल है, जंगल, इस जंगल के अंदर तुम पार हो जाओ। बड़ा दुर्जय ये भगवान की माया, ये संसार रूपी जंगल बड़ा दुर्जय है, दुरत्यय है, इसमें मार्ग मिलना बड़ा कठिन है। इसमें ये जीव एक व्यापारी के समान है जो ज्ञान रूपी धन लेकर के आया है और इसके धन को ये इंद्रियां रूपी छह इंद्रियां हैं, मन बुद्धि, ये मन और नेत्र है, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च मनसष्ठाणि इंद्रियाणि, ये छह इसके विवेक को लूटती रहती है और वे यहाँ तरह तरह का गंधर्वपुर देखता है, माने तरह तरह की संसार में कल्पनाएं देखता है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हमारा बेटा इंजीनियर हो जाएगा, फिर बड़ा सुखी हो जाएगा, वैसा हो, ऐसे गंधर्वपुर के समान ये देखता रहता है और खाने पीने के प्यास में ये इधर उधर दौड़ता रहता है। जोर से आंधी आती है उस समय इसको कुछ नहीं दिखता, ये स्त्री की आसक्ति है ना, ये स्त्री की आसक्ति जोर से आंधी चलती है, मनुष्य की आंख बंद हो जाती है, आगे पीछे का सब विचार खत्म हो जाता है। इस जंगल के अंदर उल्लुओं की डरावनी बाड़ी है, उल्लू कौन है? राजा और राजपुरुष ये उल्लू है। और सूखी नदी में जाकर सब डूब के मर गए, सूखी नदी में हो क्वचित वितोया सरितो भी आती, सूखी नदी माने कल्पना तो करते हैं कि इस विषय में सुख मिलेगा, परंतु वो विषय मिलता है तो जैसी हम कल्पना करते हैं वैसा सुख नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। कल्पना हमारी नहीं मिटती है, बस यही एक हमारी खराबी है। विषयों में जैसी हम कल्पना करते हैं वैसा सुख मिलता नहीं, लेकिन कल्पना करना हम छोड़ते नहीं है, ऐसे सूखी नदी में जाकर गिर जाते हैं। और लड़ाई झगड़ा रहता है धन के लिए, वो उससे छीन लेता है, वो उससे छीन ले लेता है। घर गृहस्थ के काम धंधे हैं वो पर्वत पर चढ़ने के समान है, और निद्रा है ये अजगर के समान है। और भाई कभी धन क्षीण हो जाता है और खाने पीने को नहीं मिलता है तो दूसरे से याचना करनी पड़ती है, जगह जगह अपमान होता है। ऐसे संसार के अंदर दो प्रकार के प्राणी मिलते हैं, एक तो बंदरों के समान भोगी पुरुष और एक जो है हंसों के समान संत महापुरुष, परमहंस लोग, संत पुरुष, दो प्रकार के मिलते हैं। अब दो प्रकार के पुरुषों में हम लोग जो है बंदरों के पास बैठते हैं, उसकी उछल कूद भौगदौड़ दौड़ना करना ये देखते हैं, हंसों की गति को हम पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए भैया ये संसार में लोग भटक जाते हैं, संसार रूपी जंगल में भटक जाते हैं। राजा ने कहा रघुगण ने कि महाराज क्या बताऊं, आज आपने मुझे जो ज्ञान दिया है ये महाराज ऐसा ज्ञान हमको मिला आपसे, इससे आज मालूम दिया कि संसार में संत समागम से बढ़कर कोई धन नहीं, कोई ऊंची जगह नहीं, कोई ऊंचा लोक नहीं। आज आपके समागम से मुझे बहुत बड़ा लाभ हुआ, मेरा अविवेक नष्ट हो गया, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। प्रणाम करने के बाद रहुगण कहां गया ये भागवत में नहीं लिखा, और हमारे जड़ भरत जी महाराज कहां गए कहीं नहीं लिखा। यही लिखा है कि वो जड़ भरत जी महाराज खूब ज्ञान में मस्त हुए हुए, जैसे कोई पानी में डूबता है, आगे पीछे ऊपर नीचे पानी पानी, ऐसे ही आनंद ही आनंद था। उन आनंद के साथ में वे हमारे जड़ भरत जी महाराज विचरण करने लगे, और वो राजा भी उस ज्ञान के अंदर रहकर देहाध्यास को छोड़कर वो भी आनंद में डूब गया। ये हमने आपको जड़ भरत जी महाराज की कथा सुनाई है। बड़े भाग्यशाली है वे पुरुष जो ऐसी पवित्र कथा को सुनते हैं, उनके सब प्रकार के मंगल कामनाएं होती है। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि महाराज उस राजर्षि भरत के वंश में कौन कौन हुए, परीक्षित ने पूछा तो भगवान सुखदेव जी ने बताया कि उसके वंश में बड़े श्रेष्ठ पुरुष हुए और आगे भी बहुत अच्छे अच्छे पुरुष होंगे, तो अंत में जो पुरुष हुआ वो हुआ विरज नाम का पुरुष। गय नाम के पुरुष तो ऐसे हुए जिनके यहाँ स्वयं भगवान आ जाती है, देवता लोग आकर के यज्ञ में हिस्सा लेते थे, ऐसे उनके वहां वंश में हुए। विरज तक इनका ये वंश चला प्रियव्रत का। अब राजा ने वो दूसरी बात पूछी कि सात समुद्र बने, सात इनके स्वामी बने और सात द्वीप बने, इनका हमको कालमान बताइए। तब अब सुखदेव जी महाराज ये प्रसंग कल बताएंगे, और कल की कथा की समाप्ति पर भाई हमारे जो है हाँ नृसिंह भगवान का प्राकट्य होगा। कल की कथा में नृसिंह भगवान का प्राकट्य होगा, और फिर जो है आगे दो दिन के बाद फिर कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी आएगी। जन्माष्टमी के दिन अपने कथा में भी जन्माष्टमी का दिन वैसा ही होगा, माने भागवत को हम लोग वर्तमान में चल रहे त्योहारों के साथ इसीलिए किए हैं कि भागवत को एकदम जीता जागता संजीदगी का भाव हमारे हृदय में उतरता चला जाए। राम
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे रे हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव।
सियावर राम चंद्र की
जय।
भोर मुकुट वंशी वाले की
जय।
श्री वेद व्यास जी महाराज की
जय।
श्री सुखदेव जी महाराज की
जय।
श्री परीक्षित महाराज की
जय।
श्रीमद भागवत महापुराण की
जय।
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की
जय।
आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधा रसमय कल रसान की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मधरि त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्यु माया भव भय हारिणी देवत सतत सकल सुख कारिणी सुभाषि हरि चरित काल की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकाशिनी भगवत्त्वरहस्यप्रकाशिनि परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मनोल्लासिनि रसिक हृदय रास विलासिनी मोक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा कीर्तन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान पान की आरती अति पावन पुराण की।
ओम यज्ञेन यज्ञमायजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमा सन्न देहनाकं महिवानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः
सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा
यस्या श्रवणमात्रेण हर्षितं समाश्रयेत्
नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर।
कुलिस्यावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। बोले श्रीमद भागवत महापुराण की जय। बोले श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोले श्री परीक्षित जी महाराज की जय।